जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे
गोपी जन
यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा मन कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम
हरे हरे
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा पार्वती घोड़ा नीता सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री प्रभु
हरे कृष्ण तो आज सीधे हम लोग चर्चा शुरू करते हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कवर करना है ना तो एग्जॉस्टन चल रहा है क्या तो हम लोग पिछले दिनों में पढ़ा या सुना किस प्रकार प्रहलाद महाराज शंट और अमर्क से सीख कर आए तो उनके पिताजी ने पूछा उनसे कि बताओ तुम क्या सीख रहा है। तो उन्होंने बताया भगवान की स्तुति, नवधा भक्ति। नवधा भक्ति को सुनने के बाद क्रोधित हुए उन पर, तो काफी कुछ प्रयास किया उनको मारने का, तब मार नहीं पाए, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि गुरुओं ने, शंडोरमक ने कहा इसे वरुण पाश में बांध के रखो और धीरे धीरे इसकी बुद्धि सही हो जाएगी, अब उसको शिक्षा देते रहेंगे। इस प्रकार वो शिक्षा देते रहे, लेकिन जब वो ज़्यादा समय शिक्षा नहीं दे पाते थे, कभी कभी चले जाते थे, तो प्रहलाद महाराज क्या करते थे, अपने मित्रों को बुलाकर शिक्षा देते थे। तो जो मित्रों को बुलाकर वो शिक्षा दे रहे थे, तो मित्रों ने पूछा शिक्षा को सुनने के बाद कि ये सब आपने कहाँ से सीखा, क्योंकि नारद मुनि तो यहाँ पर कभी आए नहीं और आपके महल से बाहर गए नहीं। तब उन्होंने बताया कि मेरी माता कयाधु के गर्भ में जब था, तब नारद मुनि के आश्रम में मुझे संरक्षण मिली थी और मेरी माता को मिला था, तो मैं वहाँ पर ये शिक्षाएं सुना था गर्भ में, ऐसा उन्होंने बताया। और उन्होंने क्या शिक्षाएं गर्भ में सुनी थी इसका भी वर्णन आप लोगों ने सुना, ठीक है। यहाँ तक खत्म हुई थी, तो इस प्रकार हम लोग आठवां अध्याय पढ़ रहे हैं। इसमें है भगवान नृसिंह द्वारा असुर राज का वध, इसको पढ़ेंगे आज। तब नारद मुनि कहते हैं, सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश की सराहना की और उन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने शंड और अमक नामक अपने गुरुओं द्वारा दिए गए भौतिकवादी उपदेशों का स्वीकार तिरस्कार कर दिया। किसने? मित्रों ने जब सुना इतनी अच्छी बातें बताई है, तो उनकी बुद्धि सही हो गई। तब शुक्राचार्य के पुत्र शंड अमर ने देखा कि सारे विद्यार्थी असुर पुत्र प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भावनावृत में बढ़ रहे हैं, तो वे डर गए। अतएव वे असुर राज के पास गए और उनसे सारी स्थिति यथावत वर्णन कर दी। ऐसा होता है कभी कभी भक्तों को जेल में डाल दें तो सोचते हैं कि ये वहां मर जाएगा जेल में, ऐसा नहीं होता है, वहीं पर जाकर अंदर प्रचार करने लगते हैं। ऐसे हुआ था कि रशिया के जेल में कुछ भक्तों को डाल दिया गया, तो जेल में इतना प्रचार किया कि 200-300 भक्त अंदर ही, क्योंकि किताबें यहाँ नहीं होती, यहाँ घुस जाती ना, इतना प्रचार किया 200 भक्त बन गए। तो बोले इसको छोड़ दो नहीं तो ये पूरी कौम अंदर ही चेंज कर देगा, छोड़ दिया गया उसको। जब छूटे तो वो उन्होंने क्या किया, अंदर बताया कि अंदर कई भक्त हैं, फिर उन्होंने कोर्ट में बातें की, वो सब अच्छे बन चुके हैं। उद्देश्य तो क्या था, अच्छा बनाना जेल का। कोर्ट में उन्होंने अपील की कि वो सब अच्छे बन चुके हैं, उनसे मिलके बातें कर सकते हो। जब उनसे मिलके बातें की कि उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने छोड़ दिया, तो 200 लोग मुक्त हो गए। तो ऐसा भक्त करते हैं, भक्त क्या करते हैं कि जहां पर मौका मिले वहां पर प्रचार करते हैं। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो ये बात उनको अजीब लगी, शंड और अनुमक रोज कहाँ चले गए, हिरण्यकशिपु के पास चले गए और जाके क्या किया, उन्होंने जाके क्या किया, हिरण्यकशिपु को बता दिया। तो हिरण्यकशिपु सारी स्थिति को समझ गए और अत्यधिक क्रोध हो गया, शरीर कांपने लगा, क्योंकि पहले भी काफी प्रयास किया था मारने का और यहाँ भी उन्होंने हार के छोड़ दिए थे, पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो ऊपर से खुद तो भक्त बना है और साथ साथ में क्या कर रहा है, मित्रों को भी बना रहा है, तो ये ज्यादा क्रोधित करने वाली बात आ गई। क्योंकि देखो कोई व्यक्ति आपके विपरीत बात करता है तब तक आप सहन कर लेंगे, लेकिन अगर वही विपरीत बात लोगों से करेगा तो आपको और गुस्सा आता है, खासकर हिरण्यकशिपु जैसे विचार वाले व्यक्ति। तो उन्होंने क्या किया, बहुत क्रोधित होने के लिए मार डालने का निश्चय किया और अत्यंत क्रूर स्वभाव के कारण अपमानित हुआ जानकर, जैसे कि एक सर्प को पैरों से कुचल दिया जाता है तो कैसे फुफकारता है, सांस कैसे धंधा नहीं छोड़ूंगा, ऐसे मार डालूंगा, ऐसे क्रोधित हो गए मारने के लिए। और उन्होंने कई बातें कही, तो बताते कई उटपटांग बातें हुई, यानी कि बहुत निंदा किया, गालियां दी, है ना। उससे क्या हो गया बताते हैं, उसकी आयु, उसका श्रेय, यश, ये सब छीण होने लगा। जैसे कि भगवान ने विष्णु ने कहा था पहले कि जब प्रहलाद का वो अपमान करेगा, अपराध करेगा, तो क्या होगा, उसका पुण्य छीण हो जाएगा। वैसे ही हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे उदंड निपट दुर्बुद्धि, परिवार के कलंकित करने वाले, अरे नीच। वहां पर पुराने जमाने में लोग गाली ऐसी दिया करते थे, आप तो गंदी गाली गाली देते हैं, कोई सिर पर नहीं रहता है। पहले गाली देते अरे हे नीच से बोलते थे, है ना, गाली देने के लिए सभ्यता थी। आजकल घृण का शुभ होकर आज के डेट में होता तो इंग्लिश में गाली देता, है ना। तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है, अतः तू हटी मूर्ख है, आज मैं तुझे यमराज के घर भेज दूंगा। ऐसा क्रोधित होकर वो क्या करने लगे, उटपटांग बोलने लगे। और बोलते हैं कि जब मैं क्रोधित होता हूं तो तीनों लोग कामने लगते हैं, पर मैं तुम पर क्रोधित हो रहा हूं तो तुम निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो उल्टा, और मेरे ही पुत्र होकर। तो और क्रोधित हो गए। तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, हे राजन, आप जिस बल के मेरे स्रोत को जानना चाह रहे हैं वही बल आपके भी स्रोत है। तो जो मेरे अंदर शक्ति सहन करने की और मुझे कुछ नहीं हो रहा है, इसका स्रोत भी आपका भी स्रोत वही है जहाँ से मुझे मिल रहा है। मैं खुद नहीं, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मुझे भी कहीं से शक्ति मिल रही है, और मुझे जो मिल रही है वो आपको भी कहीं से मिल रही है, जिसकी वजह से आप बोल रहे हो। निस्संदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्रोत एक ही है, वाला केवल आपका या मेरा बल अपित सबों का एकमात्र बल है। उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता, चाहे चल हो या अचल, उच्च हो या नीच, ब्रह्मा समेत सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बल द्वारा नियंत्रित हैं। मतलब अब कोई डर नहीं, ऊपर से ऐसी बातें बोलकर और क्रोधित कर रहे हैं। हे पिता, आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दें। आप सजेशन भी दे रहे हैं, अभी तक बोल रहे थे कि मैं अच्छा हूं, भगवान की भक्ति करना चाहिए, पर अभी तक पिता को नहीं बोले थे कि आपको क्या करना चाहिए। जब उन्होंने पूछा था कि एक मनुष्य को क्या, असुरों को क्या करना चाहिए, जीवात्मा को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने शिक्षाएं दी कि एक सामान्य जीवन को क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इसलिए आप अपने हृदय में शत्रु मित्र भेदभाव ना लाएं, आप अपने मन के सभी प्रतिसंभाव बनाएं और पथ भ्रष्ट ना हो, और भगवान की ठीक से पूजा करने में स्थित हो जाएं। ऐसा बोलने लगे तो हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गए। अरे दूर, तू मेरे महत्व को घटाने का प्रयास कर रहा है, मानो तू मुझसे अधिक इंद्र संयमी है। क्या बोल रहे हैं, इंद्र संयमी, जैसे कि हिरण्यकश्यप बहुत संयमी था, और ये अति बुद्धिमता है। अतः मैं समझ रहा हूं कि तुम मेरे हाथ से मरना चाहते हो, क्योंकि ऐसी उटपटांग बातें ही वही करते हैं जो मरणासन होते हैं। मरने के समय आते हैं तो लोग बड़बड़ाते हैं ना, उटपटांग बातें, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो वैसे ही हो गया, लगता तुझे मरना पक्का हो गया। तो बताया गया कि जो मूर्ख लोग होते हैं, जब हम उनको उपदेश देते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। किसी मूर्ख व्यक्ति को समझाने जाओगे तो उसको बुरा लगता है, उस समय उसको भाषा समझ में नहीं आती। अरे चाणक्य पंडित बोलते नहीं तो उपदेश में, उपदेशो ही मूर्खानां प्रकोपायनः शान्तये, उसको शांत नहीं कर सकते, उल्टा क्या होता है, उसका प्रकोप बढ़ता है। उपदेश देने का कोई फायदा नहीं। अरे वाग्य प्रहलाद, तूने सदैव मेरे अतिरिक्त किसी परम पुरुष का वर्णन किया जो हर एक के ऊपर हर एक पर नियंता है तथा जो सर्वव्यापी, लेकिन वो है कहाँ? यदि वो सर्वत्र है तो मेरे सामने इस खंभे में क्यों उपस्थित नहीं हो जाता? ऐसे बोलते हैं। चूंकि तुम इतना अधिक अनर्गल प्रलाप कर रहे हो, अतः अब मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सिर छिन्न कर दूंगा। अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारा परम आराध्य ईश्वर तुम्हारी रक्षा किस प्रकार करता है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। क्योंकि अब जितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, जितना विश्वास, दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास है प्रहलाद महाराज के पास, तो उनको भी होने लगा कि है तो नहीं, एक्चुअली यही हुआ उनके साथ, उनको लगने लगा कहीं सचमुच तो नहीं है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए क्या किया, उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारा सर को धड़ से अलग कर दूंगा, तब देखता हूँ तुम्हें बचाने वाला व्यक्ति जो शक्ति बहुत बल दे रहा है वो आता कि नहीं आता। ऐसा उन्होंने कहा, और बारंबार श्राप देते, कटु वचन बोलते, उन्होंने क्या अपनी तलवार निकाल ली और अपने राजसी सिंहासन पर उठ खड़ा हुआ और अत्यंत क्रोध से उन्हें खंभे पर मुष्टिका से प्रहार किया। पहले मुट्ठी से मारा, ठीक है, एक बार मारा, धूम, जैसे मारा ना तो अंदर साहब आयो, निकले नहीं भगवान, अभी अभी निकले नहीं, मुट्ठी का जो मारा ना उसका प्रतिवाद किया, आवाज दिया और उस आवाज से ब्रह्मांड का आवरण विदीर्ण हो गया, ब्रह्मांड का जो लेयर होता ना फट गया, सोचो हिलने लगा, जैसे कि नगाड़े को बजाते हैं ढूम कंपन होता ना, तो उन्होंने अंदर से मजा से किया था और पूरा वातावरण कैसे हो गया, विदीर्ण हो गया और ये आवाज ब्रह्मा तक पहुंच गई, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ही ब्रह्मा जी शिव जी तक पहुंच गई, उनकी निवास तक पहुंच गई, तो लोगों ने खड़े हो गए, लगता है हमारे विनाश का समय आ गया है, महाप्रलय का समय आ गया, सब खड़े हो गए, किसी को थोड़ी पता है कि भगवान खंभे से निकलने वाले, लीला करने वाले, भगवान क्या लीला करने वाले, बहुत आसानी से समझना है, किसी के लिए आसान नहीं समझना, तो खंभे से निकलने वाला किसी को पता नहीं था, तो लोग सोचे कि महाप्रलय का समय आ गया है। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि तो मेरा शुरुआती समय है, तो सत्युग चल रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, प्रलय के समय कहाँ से आ गया, हो हमारे लोगों का विनाश होने वाला है, सब खड़े हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, अपने ही पुत्र को मारने की इच्छा हिरण्यकश्यप ने जो इस तरह अपना अद्वितीय शौर्य दिखा रहा था, एक अद्भुत भीषण ध्वनि सुनी, उसने भी सुना और कभी ऐसे आवाज नहीं सुना था, इस ध्वनि को सुनकर असुर नायक भयभीत हो गए, उस सभा में इस ध्वनि के उद्गम से कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा, आवाज कहाँ से आई, आवाज तो आई है पर कहाँ से आई है ना, जैसे कि अभी तक मोबाइल की आवाज नहीं आई। तो अपने दास प्रहलाद के वचनों को सिद्ध करने के लिए, वे सत्य हैं, अतः सिद्ध करने के लिए परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित हैं, यहाँ तक कि सभा के भवन के खंभे के भीतर भी हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरि ने अपना अद्भुतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया और रूप ना तो मनुष्य का था ना सिंह का, इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए और जैसे प्रकट हुए तो ये नहीं पता चल रहा था उसी खंभे से निकलने वाले हैं, जैसे भगवान ऐसे नहीं निकले कि जैसे टीवी में दिखाता है या मूवीज में दिखाता है कि टूटे और निकल गए, तो भगवान तोड़ते हैं तो धीरे धीरे तोड़ते हैं, आपको पता है कि किसी वस्तु को झटके से तोड़ने से कम ताकत लगती है और धीरे तोड़ने में ज़्यादा लगती है, तो तोड़ रहे भगवान निकल रहा है, तो धीरे धीरे क्रैक आ रहा है उसके अंदर, सोच के देखो हम ऐसे भगवान को निकलते हुए देखेंगे ना भाग जाएंगे, सुलभ शौचालय हालत खराब हो जाएगी, और क्या बोलने लगे, हिरण्यकश्यप मानो आश्चर्यचकित हुआ, सिर जो था वो सिंह का था और शरीर मनुष्य का, ये कैसा प्राणी है जो आधा पुरुष था आधा सिंह, मतलब डरना अलग, कितने सारे भाव प्रकट हुए होंगे, आश्चर्यचकित कि कहाँ से आवाज आ रही है, ठीक है, फिर शरीर को देख करके आश्चर्यचकित होना कि कैसा प्राणी है, डर लग रहा अलग है ना, क्रोध आ रहा अलग बच्चे पर, कितना सारा मिश्रित भाव था, तो घबराए हुए थे। तो 19, 20 और 21, 22 श्लोकों में बताया गया कि वो कैसे थे, कि बड़ा अद्भुत वर्णन है, अगर मैं तो सोच रहा था पढ़ते समय कि अगर ये सामने में देखने मिल रहा है तो घबरा तो जरूर जाएंगे, ये तो पक्का है, सुनिए कैसा था वर्णन। हिरण्यकश्यप ने अपने समक्ष खड़े नृसिंह देव के रूप का निश्चय करने वाले भगवान के रूप को देखा, उनकी क्रुद्ध आंखों के कारण जो पिघले स्वर्ण से मिलती थी, आंखें लाल थी, अगर ज्यादातर आंखें जब हमारी आंखें लाल होती है तो काला वाला भाग लाल नहीं होता है, भगवान को वो भी लाल था और बाकी था जैसे पिघला हुआ सोना लाल होता ना वैसे था, और वो रूप अत्यंत भयानक लग रहा था, उनके चमकीले गर्दन के बाल अयाल कहते हैं, बाघ के जो बाल होते हैं ना गर्दन पे उसको अयाल कहते हैं, उनके भयानक मुखमंडल के आकार को फैला रहे थे, मुखमंडल इतना रहता है और बड़ा लग रहा था, इतना बड़ा शरीर दुबला पतला था, भगवान का शरीर ऐसा नहीं था कि बाइसेप्स बने हुए हैं सिक्स पैक है, ऐसा नहीं होता है, भगवान का कमर होता है बताते हैं कि वो 14-15 इंच का होता है बस, और जब वक्त से स्थल इतना चौड़ा होगा, ऐसे होते भगवान विषय क्या था। ऐसे लोग सोचते हैं वो करने वाले जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना वैसे बनाते हैं, भगवान को कॉपी करते हैं। और उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे, उनकी उस्त्र जैसी तीक्ष्ण जीव लड़ाई में तलवार के समान इधर उधर चल रही थी, ऐसे जीव निकली तो बाहर घूम रही थी। आप सोच के देखो ऐसा लग रहा तलवार चल रही है ऐसे, उसी से कई सैनिक मर रहे होंगे वहां पर। उनके कान खड़े थे और स्थिर थे, जैसे कोई जानवर का होता ना जब लड़ाई करने की बारी आती तो खड़े होता है, सिर झुका लेते हैं ऐसे, कान बड़ा हो जाता है, ऐसी स्थिति थी। उनके नथुने खुला मुख पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे, ते भगवान छोटे से नहीं थे। बताते हैं भगवान का विग्रह जो है वो 120 फीट का बनाना चाहिए एक्चुअली एक्चुअल साइज का। अगर 2 फीट का प्रहलाद महाराज को बनाए तो क्योंकि 4 साल का बच्चा 2-3 फीट का लगभग होगा ज्यादा था, अगर इतना बड़ा हो तो नहीं नहीं उसके कंपैरिजन में सोचिए कि 120-140 फीट के होने चाहिए भगवान। तो सोच के देखिए उनके जो नथुने हैं तो गुफा के समान लगेंगे लगेंगे, 120 फीट की हाइट वाला व्यक्ति का नाक दिखा कितना बड़ा, इतना बड़ा नाक दिखेगा। तो गुफा जैसे लग रहे थे, उनके जबड़े फैले हुए थे। जबड़े कैसे फैले हुए, फैले के मतलब इधर नहीं फैलता ऐसा है जबड़ा है ना, तो मुंह खुला खोले हुए ठीक है। और उनका समूचा शरीर आसमान को छू रहा था, उनकी गर्दन अत्यंत छोटी और मोटी थी, क्या सिंह का जो होता है गर्दन चौड़ा लंबा नहीं होता है, जिराफ के समान छोटा होता है और फैला हुआ होता है। और छाती चौड़ी थी, कमर पतली, उनके शरीर के रोएं चंद्रमा के किरणों के समान श्वेत लग रहे थे। उनकी भुजाएं चारों दिशाओं में फैले सैनिकों के टुकड़ों से मिलती जुलती थी, मतलब इतनी सारी सेना इकट्ठा हो गई नहीं, जब देखा उन्होंने आवाज सुनी कि वहां खंभा टूटा है, कोई भयानक जीव जंतु निकला है, तो सारी सेना घुस गई अंदर। तो राक्षस भी बहुत ऊंचे ऊंचे थे, 10-12 फीट के, और हिरण्यकश्यपु बहुत ऊंचा था, हिरण्यकश्यपु बहुत ऊंचा था, मतलब समझ लीजिए हिरण्यकश्यपु का 30-40 फीट उसका भी होगा, तो भयंकर खतरनाक था राक्षस भी। लेकिन की भुजाएं इतनी सारी थी ऐसा लग रहा था कि सेना है भगवान की भुजाएं। और जब वे असुर धूतरों तथा नास्तिकों का अपने शंख चक्र गदा कबल और अन्य प्राकृतिक अस्त्र शस्त्र से वध कर रहे थे तो अद्भुत दृश्य था। संस्कृत की शंख से भी शंख से किसी को मार रहे होंगे, इतनी सारी है, आप फोटो देखे नहीं उसका ना कभी, देखे बहुत सारे सेना है, किसी के नाखून से गर्दन उड़ा रहे हैं, से गर्दन उड़ रही है, किसी की हथेली निकाल रहे हैं, किसी को फेंक रहे हैं, सब मारे हैं, सब हाथ से सत मार रहे हैं। सोच के देखिए आप दोनों हाथ से मारते हो तो अपने दोनों हाथ को तो वो देख लेगा है ना, मान लीजिए कोई एक हाथ से तलवार से लड़ रहे होंगे, दूसरा हाथ जाकर गर्दन पकड़ लेगा उसके, उठा देगा, कैसे मारेगा वो। लेकिन सोच के देखिए मैं एक हाथ से लड़ रहा हूँ ठीक है, और इस हाथ से दूसरे हाथ से लड़ रहा हूँ तो आपको कन्फ्यूज हो जाएगा, दोनों हाथ बिजी हैं, मैं इसके पेट में मार देता हूँ सोचेंगे, उसको तलवार तीसरा हाथ है, चौथा हाथ से गर्दन पकड़ेंगे, पांचवें ऐसे तो कपड़े खोल देंगे उसका है ना, फिर वो 4-5 हाथ पकड़ के सीधा खड़ा कर देंगे, पिटाई भी शुरू हो जाएगी। आसान नहीं है, इतने 100 हाथ उनके हैं, 10 हाथ कुछ भी कर सकते हैं भगवान, तो वही कर रहे थे। जिस तरह एक बेचारा छोटा पतंगा बरबस अग्नि में गिर कर अदृश्य हो जाता है ना, जब अग्नि जलती है तो पतंगा कूद जाता है आकर्षित होकर खाने के लिए, उसी तरह हिरण्यकश्यपु ने तेजोमय भगवान शरीर से तेज निकल रहा था भगवान के और कूद गए मारने के लिए है ना, मारने के लिए जैसे जंप करे तो दिखना बंद हो गया लोगों को, कहाँ चले गए है ना, अगर वो भगवान ऐसे पकड़ भी लें उसको गोदी में सारे हाथों से ढक लो दिखेंगे नहीं, अदृश्य हो गए। और थोड़ी देर क्रुद्ध होकर उन्होंने क्या किया, हिरण्यकश्यपु ने तेजी से नरसिंहदेव पर अपनी गदा का आक्रमण किया, उन्हें मारने लगा, किंतु भगवान नरसिंहदेव ने उस महान असुर को अपने गदा के समेत उसी तरह पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, अन्यथा पकड़ लिया सारे तरफ सारे हाथ को पकड़ लेगा तो क्या होगा, सारे हाथ पकड़ लें मेरे लिए बताना मुश्किल है, समझ लीजिए हाथ यही है पर यहाँ ही पकड़ ले, यहाँ ही पकड़ ले, यहाँ ही पकड़ ले, तो गरुड़ ऐसे पकड़ता है, क्या करता है पंजों से पकड़ लेता सांप को और गर्दन को क्या करता है चोंच से पकड़ लेता तो छटपटाता है, वैसे पकड़ लिए। और जब नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यपु को अपने हाथ से छूट जाने का अवसर दे दिया, बीच में छोड़ते हैं, जब जैसे कोई बड़ा पशु होता है ना बीच में छोड़ता खेलता है ना, छोड़ दिए थोड़ी देर बाद फिर पकड़ लेते हैं, कहते हैं नेवले और सांप में लड़ाई होती है, गिद्ध सांप में ना दसी होता है। अवसर दे दिया, कभी कभी गरुड़ सांप के साथ खिलवाड़ करते हुए अपने मुख से सरक जाने के लिए देता है, तो जब छोड़ देते थे ना तो सारे देवी देवता देख रहे थे, छुट गया अब लगता हो गया तो घबरा जाते ना कि अब क्या होगा, है ना। कि जैसे कि मान लीजिए कोई गुंडा है या ये मूवीज देखते हैं हम लोग, तो कोई छूट जाता है बोले अभी तो उसको मार देगा वापस, कुछ लड़ाई होगी, अगर ये बच गया तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, है ना, क्योंकि उसका विष्णु के साथ लड़ाई करा और विष्णु से जीत गया हो तो हमारा तो बहुत नुकसान होने वाला। तो जैसे छूटता था तो घबरा जाते थे, पहले खुश होते रहते थे फिर उदास हो जाते थे क्या हो गया, है ना। तो ऐसा होता है, जैसे बचपन में एक कथा सुनी थी हम लोग कि एक बार एक नदी के किनारे बहुत सारे चूहे रहा करते थे, वो चूहे सब स्नान करते थे नदी में और बाहर आते थे, एक बार हाथी आ जाता है वहाँ पर, हाथी को देखकर ना सब घबरा जाते हैं और सब पेड़ पर चढ़ जाते हैं, हाथी को भी बहुत गुस्सा आता है कि मैं यहाँ नहाने आया हूँ सारे चूहे क्या कर रहे हैं, तो सारे चूहे पर चढ़ जाते हैं, हाथी आके पेड़ के पास जोर से चिंगाड़ आदमी लगाता है वहाँ करते रहता है, तो जितने भी पेड़ पर सब चूहे रहते हैं वो घबरा रहते हैं, अच्छे अच्छे स्थान पर छुप के बैठ रहते हैं पकड़ के, पर एक चूहा ना वो ठीक से पकड़ नहीं पाता, छोटी सी डंगाल को पकड़ा रहता है, तो क्या होता है जोर से चिंगाड़ जब आती है कंपन होता है तो गिर जाता है, गिरता हाथी पर है, तो सारे चूहे चिल्लाते हैं मार डाल छोड़ना नहीं इसे दबा दे इसे, तो ऐसा सब चिल्लाते हैं, तो जैसे तैसे बेचारा भाग कर वापस आता है, पहले बोलता वो तो सब ठीक है धक्का किसने दिया था। तो ऐसी होता है कि ऐसी लड़ाई की स्थिति में ना लोग बड़े अचंभित रहते हैं, इधर बहुत ध्यान केंद्रित रहता है कि कौन छूट रहा है कौन मार खा रहा है ना। हम भी जब महाभारत सीरियल देखते थे तो क्या होता था, जैसे देखते थे कोई छूट गया, अरे यार छूट गया अब क्या होगा, अरे भीम को उसने दुशासन मार रहा है भीम को, ऐसे कैसे हो सकता है, तो एक्साइटमेंट होता है, तो वैसे ही देवताओं को लग रहा है कि छूट गया अब क्या होगा, छूटते थे तो घबरा जाते थे, पकड़ा देते तो रिलैक्स हो जाते थे तो मार ही देंगे, फिर छूट जाते फिर घबरा जाते थे, ऐसा वातावरण चल रहा था। और इस प्रकार वो बार बार आक्रमण कर रहा था, बताते उनकी सेना को तो ऐसे भगवान ऐसे छिटकते थे तो ऐसे 50-60 तो ऐसे ही फेंका जाते थे वापस ही नहीं आते थे। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उन्होंने उसकी तलवार को छीन लिया भगवान ने हिरण्यकश्यप को, और क्या किया उसको घुमा के फेंक दिया दूर, जो फेंक दिया तो वो भाग भी जाता था तेजी से, गायब हो जाता था अचानक से आ जाता था, लेकिन इस दौरान वो आंखें बंद करा रहता था, डरता था देखकर भगवान के उस भयंकर रूप को देखकर डर जाता था, कि भगवान जब हंसते थे ना तो आंखें बंद कर लेता था डर के, कि भगवान जो सोचिए जब हुंकार लगाते थे तो ब्रह्मांड विदीर्ण हो जाता था, तो सोचिए जब चिल्लाते होंगे हंसते होंगे तो कैसा लगता होगा, और सिंह के रूप में हंसना अलग ही होता। तो आपने कभी शेर को दहाड़ते हुए देखा है, जू में नहीं, जू वाला नहीं दहाड़ता है, एक्चुअली जू वाला ऐसे रोता रहता भूख के लिए, जू में जो होते हैं ना शेर वो बस तो मतलब समझ ली भूख लगी तो बोलते बेचारे, तो वो पूरा मुंह भी नहीं खोलता ऐसा करते बस, ये तो आवाज कुछ भी नहीं है। आप कभी किसी जंगल से, हम लोग जब गांव जाते हैं तो कभी कुछ सुनते थे, वो अपने जंगल से चिल्लाता है ना तो घरों में बर्तन हिलाते हैं, बर्तन गिर जाते हैं, ऐसे दहाड़ होती है, और उसकी जो दहाड़ होती है वो पता नहीं चलता कहाँ से आ रही है, भगवान ने ऐसे बुद्धि दी है कोई दिशा पता नहीं चलता है। तो क्या होता है जानवर भागते भागते कभी कभी शेर के पास ही आ जाते हैं, हमने एक वीडियो देखा था जिसमें शेर ने बैठा हुआ है बस दो बार किया से ना, तो एक हिरण भागते हुए जाया और उसी के सामने आकर उसी से टकरा गया और बेहोश हो गया एक हिरण, और उसने पंजा उस पर रख दिया और उसको खाने लगा। तो ऐसे ही होता है कि वो जब वो करे जा रहे थे बहुत अद्भुत दृश्य था, वो घबराए हुए थे हिरण्यकश्यप को समझ नहीं आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि चारों तरफ नरसिंह भगवान है, कहीं भी जाता है तो देखता उन्हीं को, साइज भी इतना बड़ा था, तो जैसे कि कोई सांप किसी चूहे को या गरुड़ किसी अत्यंत विषैले सर्प को पकड़ ले उसी प्रकार भगवान ने उसे पकड़ लिया, फाइनल अब उसका हालत खराब होने वाली है, और पकड़ लिया बताते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया था, जल छिड़का था तो उसकी त्वचा बहुत कैसी बन गई थी, याद करो, वज्र के समान है ना, और रंग कैसा था स्किन का, गोल्डन है ना। तो बताते हैं वज्र के समान था, जो कि बताते हैं कि यहां तक ये भी बोला गया कि वज्र भी प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा शरीर था। भगवान ने क्या किया, उसे पकड़ लिया, अपनी गोद में बैठा लिया, छटपटाने लगा, वो समझ गया मेरा अंतिम समय आ गया, और जंगा पर रख कर दिल्ली पे ले गए, दिल्ली मतलब गेट के चौखट पर ले गया, और नाखून को अपने भगवान ने गड़ा दिया और उसको फाड़ डाला पूरी तरह। तो इसलिए भगवान के इस जो गाते हैं ना हम लोग, केशव धृत नर हरि रूप है ना, जय जगदीश हरे, उसके पहले क्या बोलते हैं, अद्भुत श्रृंगम, अद्भुत श्रृंग मतलब श्रृंग मतलब श्रृंगार, भगवान ने अजीब से श्रृंगार किया है ना। भगवान के हाथ कैसे हैं, कमल के समान कोमल है, और उसका शरीर कैसा है, वज्र के समान कठोर, कमल वज्र को कैसे फाड़ सकता है, अजीब बात है ना, यही अद्भुत श्रृंग है। जयदेव गोस्वामी जो लिख रहे हैं उसमें उसकी टीका में यही है कि ये अद्भुत बात ये है कि भगवान के नाखून आप भगवान के हाथ कमल जैसे हैं, अगर वो फाड़ेंगे तो कैसे फटेगा। तो उदाहरण दे रहे हैं भृंग का, क्या भजन, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम तनु भृंगम, ठीक है समझे बात को, क्या तव कर कमल वरे, तव फिर कर कमल, कर हाथ कमल के समान, तव कर कमल वरे अद्भुत श्रृंगम, अद्भुत श्रृंग किया भगवान ने, उनके हाथ कमल जैसा है, तनु भृंगम, भृंग का मतलब होता है भौरा, भौरे को भौरा कमल पे बैठता है, ठीक है, तो जब वो बैठता है कमल बंद रहता है, कमल के मुख पे बैठता है तो कमल खुल जाता है, फट जाता है भौरे की जो भनभनाहट से, भौरे की शक्ति से कमल फट जाता है। पर सोच के देखिए कि भौरा बैठे और कमल पर भौरा फट जाए, तो यह भृंग की तुलना की गई है हिरण्यकश्यप से, कमल की तुलना की गई है भगवान से, तो सोचे कि भौरा बैठे कमल पर भौरा फट जाए कमल को टकरा के, तो यह अद्भुत है, ये आश्चर्यजनक है, ये आश्चर्यजनक घटना घट रही है यहाँ। इसलिए वहां जयदेव गोस्वामी लिख रहे हैं तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम तनु भृंगम केशव धृता नर हरि रूप जय जगदीश हरे। तो भगवान आपने क्या अद्भुत श्रृंगार किया, क्या रूप लिया है ना। तो इस प्रकार उसका वध कर देते हैं और बताते हैं कि इतना सुंदर श्रृंगार किया भगवान ने, कैसा श्रृंगार किया है, कोई माला नहीं पहनी, उसकी हथेड़ी को निकाल लिया और गले में लपेट लिया हथेड़ियों को, सोच के देखिए है ना, माला की जगह फूलों की माला है, उसकी जगह क्या होगी हथेड़ियाँ। और जब जब फाड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि फट गया तो भी एक एक बूंद निकल रहा है, खून के छींटे आए तो उनके जो बाल थे उस पर लगे हुए खून के छींटे है ना। और भगवान क्रोधित है, फाड़े जा रहे हैं, बाल हिल रहे हैं, सोचे चमकीले और उसमें छींटे पड़े हुए हैं, क्या सीन होगा है ना, हम तो देख भी नहीं पाएंगे। भयानक आंखों की ओर देख पाना संभव नहीं था, वे अपने मुख के कोरों से जीभ को चाट रहे थे, यहाँ पर जो लगा हुआ था खून उसको चाट रहे थे, जैसे जानवर करता ना, पशु करता वैसे। हिरण्यकश्यप की उधर से निकली हुई आंतों की माला सुशोभित हो रही थी, वे सिंह की भांति प्रतीत हो रहे थे, जिसे अभी भी किसी हाथी को मारा हो ऐसा लग रहा है, सांस लेते रहता है फड़ने के बाद, बड़ा मजा आ रहा होगा उनको, नहीं भगवान को क्रोध लीला कर रहे हैं। तो क्या किया, अनेक अनेक भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सर्वप्रथम हिरण्यकश्यप का हृदय निकाल लिया, ऑपरेशन अभी भी जारी है, पेशेंट मर चुका है, और उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर वे असुरों की सैनिक की ओर मुड़े, क्यों, क्योंकि बड़े लिख रहे हैं ये सैनिक हजारों के झुंड में थे, भगवान से लड़ने आए थे और हाथों में हथियार उठाए हुए थे, ये हिरण्यकश्यप के अत्यंत स्वामी भक्त अनुचर थे, तो इसलिए आए थे लड़ने के लिए। किंतु नरसिंहदेव ने उन्हें अपने नाखूनों की नोक से ही मार डाला। आप सोचो ना, इतना बड़ा, इतना मोटा, इतना नोकीला भाला हो, नाखून वैसी होगा ना 120 फीट के कंपेरिजन में नाखून कैसा होगा, सोच के देखिए, तो भगवान ऐसे ऐसे करके मार रहे थे, जैसे हम लोग बैलून तोड़ के ना फाड़ते हैं, भगवान ऐसे मार रहे थे, कितना मजा आ रहा होगा, भगवान बोला करो मैं मेले में आया हूँ, बैलून तोड़ रहा हूँ। तो ऐसे मारे जा रहे थे, सारे सैनिक मारे गए। दर्शित देव के सिर के बालों से बादल हिल रुल कर इधर उधर बिखरने लगे। बहुत ऊंचे थे तो हिलते, जब ऐसे मार रहे थे तो बादल जो थे ना, बादल हिल रहे थे, फेंका रहे थे इधर उधर। उनकी जल्दी आंखों से आकाश के नक्षत्रों का तेज मंद बढ़ गया। उनके श्वास से समुद्र उद्वेलित हो रहे थे। सांस लेते से लग रहा था कि सुनामी आ गया है ना। उनकी गर्जना से सारे संसार के हाथी भय से चिंगारने लगे और भागने लगे कि भाई पता नहीं ऐसा कौन सा शेर आ गया है, इतना भयंकर क्या स्थिति होगी। नरसिंह देव के सिर के बालों से वायुयान बाह्य आकाश तथा उच्च लोक में जा गिरे। बाल जो थे ना घुमाते हो ना तो उनके बाल झड़पते होंगे, उससे वायुयान उसकी हवा से पता चला सिंगापुर जा रहे तो कहीं और जाके गिर गए, ऐसा हो गया। तो क्या हुआ, वो उच्च लोकों में जा गिरे, बाह्य आकाश आकाश में थे तो लोकों में जा गिर गए। हाँ, भगवान के चरण कमलों के दबाव से पृथ्वी की स्थिति छटकती प्रतीत हुई। असह्य बल से सारे पर्वत इधर उधर उछल गए। भगवान के शरीर तेज से आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट गया। बातें मत कीजिए, ठीक है। अपने बल और ऐश्वर्य की सामना करने वाले किसी को ना पाकर सभा भवन में राजा के श्रेष्ठतम सिंहासन पर जा बैठे। देखे कि कोई लड़ने नहीं आ रहा है, आसपास कोई लड़ने नहीं आ रहा है, कोई है देखते रहे सबको, कोई आ नहीं रहा है। यहाँ तक कि देवता लोग भी सब खड़े देख रहे हैं, कोई नहीं आया। तो वही सिंहासन पर जाके बैठ गए। ऐसा होता है तो युद्ध करने वाला जब सबको मार देता, देखता कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, तो एक ऊंचे स्थान पर जाके बैठता है। ऐसे सोल्जर्स करते ना, टैंक पर जाके बैठ जाते हैं, फोटो खिंचवाते रहते हैं, ऐसे ही जाके बैठ गए। और भय तथा आज्ञाकारिता के कारण किसी में साहस नहीं हुआ कि सामने आकर भगवान की सेवा करे। हिरण्यकशिपु को तीन लोगों का सिर दर्द बना हुआ था। जब स्वर्गलोक के देवताओं की पत्नियों ने देखा कि इस महान असुर का वध हो गया है तो उन्होंने चेहरे प्रसन्नता आई और उन्होंने क्या किया, फूलों की वर्षा शुरू कर दी। ऐसा लगता है कि फूलों की टोकरी लेके बैठे रहते हैं, जैसे लड़ाई शुरू होता है, अब तो छिड़क नहीं है। और बताते हैं कि इतने सारे विमान पर देखने आए थे, जैसे मैच देखने आते हैं ना, ऐसे देखने आए कि थे, इतने सारे विमान थे कि पूरा आकाश ऊपर देखने से विमान ही विमान दिख रहे थे, आकाश दिख ही रहा था, इतने विमान थे देवताओं के। वो सब आके पूरे मैच देख रहे थे क्या हो रहा है ना, कब सामने वाला प्रतिद्वंदी WWF वाला मरेगा, है ना, फाइटिंग चल रही है। और ढोल लगाने बजाने लगे, देवलोक की स्त्रियां नाचने लगी, गंधर्वों के मुखिया मधुर तान गाने लगे। है ना, जीत गए रे भैया, जीत गए, है ना राजू भैया, जीत गए। नगाड़े आते हैं ना बच गए मोहल्ले में, और होली खेलते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, डंग डन नकर डंग डन नकर डन बजाते हैं, बीजेपी के हमारे नेता जीत गए। तो ऐसे ही नगाड़े बजने लगे, सब वहीं से सीखे हैं लोग। लेकिन क्या हुआ कि उसी समय ब्रह्मा जी इंद्र तथा शिव जी प्रमुख थे, साधु के साथ पितृलोक सिद्धलोक विद्याधर लोक नागलोक निवासी अप्सराएं गंधर्व चारण पक्षी यक्ष किन्नर बेताल किम पुरुष लोग सभी लोग पहुंच गए। और सब ने अपने अपने सिरों के ऊपर हाथ जोड़कर ऐसे स्तुति की। कैसे स्तुति करना मतलब बताता है, विजयी व्यक्ति को स्तुति की जाती है और सम्मानित व्यक्ति को स्तुति की जाती है। ऐसे करने का मतलब रेस्पेक्ट है और ऐसे करने का ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है। तो ऐसे पूर्ण रूप से समर्पण की भावना, ऐसे रेस्पेक्ट करने लगे। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा है ना कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ब्रह्मांड के सृष्टि के पालन है, स्तुति कर रहे हैं। पर सब क्यों कर रहे हैं कि भगवान क्रोधित है, शांत कराने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। तो पहले ब्रह्मा जी बोले, आप ब्रह्मांड के वास्तविक पालक तो आप हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, आपको मैं नित्य दास हूँ। तो थक गए बोल के शिव जी आए। शिव जी बोलते हैं, ये नगण्य हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है, मतलब क्रोधित मत हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो व्यक्ति क्रोधित है और सबको मार दिया है तो क्रोध कम नहीं हो रहा, तो बोलते नहीं मर गया आप क्या क्रोध करने की जरूरत है, हो गया ना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, थोड़ा ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं, शांत हो जाओ, कूल डाउन ऐसा बोलते ना, वैसे बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं, भक्त वत्सल प्रभु कृपा करके अपने पुत्र प्रहलाद महाराज की रक्षा करें, जो आपके निकट पूर्ण शरणागत रूप में खड़ा हुआ, इसको तो देखो। शांत करने के तरीके अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, फिर भी शांत नहीं हुए। फिर भी जैसे कोई बोलता था ना उसी की तरह उसी तरफ करते थे, तो पीछे हट जाते, बोलते ठीक है आप दूसरा आप स्तुति करो भैया। उसके बाद इंद्र आते हैं, इंद्र भी बोलते हैं कि आपने हमारे स्थायी निवास में जो हमला हुआ था उसको घेर लिया था, आपने उसे बचा लिया। आपकी आशीष है प्रभु, हम सदैव आपकी सेवा में लगे रहते हैं और काम क्रोध अर्थ हम इस संसार के लोग लगे रहते हैं, मोक्ष की कोई कामना नहीं करता। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके, कूल कूल कूल। ऋषि लोग आप लोग आगे आइए, ऋषि लोग जल्दी आगे आइए। ऋषि लोग आते हैं, श्री ऋषयो वाच, ऋषि लोग बोलते हैं कि आपने, आप तो सबके पालक हैं, हमारे भी शरण शरणागत हैं, आपके चरणों में हमारा जीवन है, संसार के कार्यकलाप आपसे चलते हैं, असुर को मारने के लिए तपस्या की थी, फिर विधि का अनुमोदन हुआ, आप प्रकट हुए। बोलते हैं ठीक है कोई आगे चलो जी। पितर लोग आते हैं, ऐसे करके सभी आते हैं। आपने जैसे कि कोई व्यक्ति बलि को छीन कर खा जाता है, हमारे बलि को जितने भी श्राद्ध करते थे लोग, पितर का दान करते थे, इस सब को छीन कर खा जाता था, आपने बहुत अच्छा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसके भगवान क्रोधित करते हैं, वो भी हट जाते हैं। फिर आते हैं सिद्ध लोग, सिद्ध लोग भी बोलते हैं कि बहुत ही धूर्त व्यक्ति था, आपने सही किया, आपने अच्छा किया, बहुत घमंडी हो गया था, ऐसी मारना चाहिए। तो भगवान एक्चुअली वो स्तुति नहीं चाहते, वहाँ क्रोध लीला कर रहे हैं, स्तुति नहीं चाहते, वो स्तुति की जा रहे हैं। विद्याधर आते हैं, नाग लोग के लोग आते हैं, वैराइटीज, अलग अलग स्तुति करेंगे ना, शायद किसी से मान जाए। मनु आते हैं, बहुत सारे मनु एक साथ बोलते हैं, प्रजापति आते हैं, गंधर्व आते हैं, चारण आते हैं, सबके श्लोक हैं, मैं आगे चले जा रहा हूँ फास्ट। यक्ष आते हैं, किम पुरुष लोग, किम पुरुष लोग के जो हनुमान जी किम पुरुष लोग हैं, चेहरा वानर जैसा है, शरीर मनुष्य जैसा, किम पुरुष बोलते हैं, किम पुरुष लोग के लोग भी आते हैं, वैताल लोग भी आते हैं, किन्नर लोग के लोग आते हैं, लास्ट में विष्णु पार्षद आते हैं। विष्णु पार्षद बोलते हैं हम समझते हैं कि उसका मारा जाना उस पर आपकी विशेष कृपा है, आपने ठीक किया, तो सोचते हैं कि हम तो विष्णु के ही दूत हैं, भगवान उनको भी करते तो बोलते हैं ठीक है हमारी भी नहीं सुन रहे हैं। लक्ष्मी जी बोलती मैं तो जाऊंगी नहीं, दूर ही रहूंगी, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। तो नौवें अध्याय में बताया गया कि प्रहलाद महाराज को भेजा जाता है। तो बोलते हैं ब्रह्मा शिव इत्यादि अनेक बड़े बड़े देवताओं का साहस न हुआ कि भगवान के समक्ष जाए, क्योंकि उस पर समय अत्यंत क्रूर थे। वहां पर उपस्थित भय भी सारे देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि वे उनके समक्ष जाए, किंतु उन्होंने भी भगवान का साधुत असामान्य रूप कभी नहीं देखा था, अतः वो भी नहीं जा सकी। बोली अभी देखे ना कितने लोग गए थे, मेरे को भेजो फिर से, तो मुझे डर नहीं लगता है क्या, गई नहीं, और ज्यादातर से कुछ बहाना कर देते माता है ना, मुझे तो काम है मैं जा रही हूँ। तो चले, तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने पास खड़े प्रहलाद महाराज का अनुरोध किया, हे पुत्र भगवान नरसिंह तुम्हारे असुर पिता पर अत्यधिक क्रुद्ध हैं, समझाया, अतः तुम आगे जाकर भगवान को शांत करो। और इतनी सब लड़ाई में शांत बैठे थे, एकदम शांत बैठ के पूरा मैच देख रहे थे क्या हो रहा है, न खुश हो रहे थे, मतलब खुश तो हो रहे होंगे अंदर से, घबराए हुए नहीं थे। फिर धीरे धीरे भगवान नरसिंह की ओर बड़े और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर गिर कर उनको सादर प्रणाम किया। भगवान नरसिंह को कौन प्रणाम कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज, दूरा दंडवत होके। और जैसे ही नरसिंह ने देखा कि छोटे से बालक प्रहलाद महाराज ने चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम किया, तो अपने भक्त के प्रति अत्यंत भाव विवर उठ गए, तुरंत द्रवित हो गया हृदय कि मैं इसी के लिए तो आया था, है ना। प्रहलाद को उठाते हुए अपना कर कमल उसके सिर पर रख दिया और उनका हाथ उनके समस्त भक्तों को सदैव अभय प्रदान करने वाला है सिर पे फेरने लगे। कितने सारे हाथ थे फेरने लगे, फिर मेरा बच्चा। तो बताते हैं आचार्य कि उस समय भगवान को पहली बार वात्सल्य रस का आनंद प्राप्त हुआ एक लीला में, इसके पहले भगवान को कभी नहीं मिला था, मत्स्य अवतार में, वराह अवतार में कहीं वात्सल्य रस का नहीं मिला था। वात्सल्य रस का आस्वादन दोनों लोग करते हैं, बच्चा भी करता है और माता पिता भी करते हैं। माता पिता को अच्छा लगता है बच्चों पर हाथ फेरना, बच्चों को अच्छा लगता है माता पिता पर हाथ फेरना, इसलिए बच्चा ज्यादा गोदी में बैठ जाएगा, है ना। यहाँ तक कि जब बच्चे बड़े भी होते हैं तभी माता पिता सोचते हैं कि बच्चों पर हाथ फेरें, है ना, सिर चूमे उसका। और बच्चों को भी अच्छा लगता है बड़े होने पर कि माता पिता के पास जाएं। कितनी भी बूढ़ी माँ होगी जब, या कितना भी बूढ़ा व्यक्ति होगा अपनी माँ के पास जाएगा तो माँ जरूर हाथ फेरेगी उस पर। तो वैसे ही हाथ फेर रहे थे तो प्रहलाद महाराज को बड़ा आनंद आ रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि संसार की सारी इच्छाएं खत्म हो गई, अब कुछ बचे ही नहीं। अतः वे दिव्य पद को प्राप्त हो गए और सारे शरीर में आनंद के लक्षण प्रकट होने लगे, रोंगटे खड़े हो गए, रोने लगे, हृदय आंखों से आंसू लगे, हृदय में ऐसा लगा कि भगवान निवास कर रहे हैं, एकदम अद्भुत वातावरण हो गया उनके जीवन का। और प्रहलाद महाराज लगभग समाधि की अवस्था में पहुंच गए, है ना। तो प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना प्रारंभ की, असुर परिवार में जन्म लेने के कारण ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने की उपयुक्त प्रार्थना करूं। यहाँ पर बताया कि प्रहलाद महाराज घमंडी नहीं हो गए कि मेरे को बचाने भगवान आए थे, अब समझिए बात को ध्यान से, वो क्या हो गए और विनम्र हो गए। जो भक्त उन्नत हो जाता है और विनम्र हो जाता है, तो वो उपयुक्त प्रार्थना कैसे कर सकते। मैं तो प्रार्थना भी नहीं किया कि आपको बुलाऊं, है ना। आज तक ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता समस्त मुनिगण उत्तम उत्तम वाणी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए, यद्यपि ये सारे व्यक्ति सद्गुणी परम योगी है, तो फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए। मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूँ, मैं तो आपकी स्तुति भी नहीं कर सकता, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, है ना। मैंने तो कभी स्तुति जानता भी नहीं। अपने आपको और विनम्र बोल रहे हैं कि भगवान मैंने तो आपको प्रार्थना करके बुलाया भी नहीं और आप फिर भी प्रकट हो गए मुझे बचाने के लिए, है ना। जैसे कि कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी बोलते हैं, जगाई माई मधाई हई ते मुई से पापिष्ठ, पूरी से कीट हई ते मुई से लगिष्ठ। बोलते हैं कि जगाई मधाई जैसे महान जो है पापी है उससे भी गायबिता हूँ, ठीक है, और मैं तो कीड़े जो मल में रहता है ना उससे भी गायबिता हूँ। कौन बोल रहे हैं? कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी, चैतन्य चरितामृत लिखते हैं। अब बोलते हैं कि कोई एक बार मेरा नाम ले लेगा तो उसके सारे पुण्य क्षय हो जाएंगे, मैं इतना गायब बीता हूँ। फिर भी भगवान कितने कृपालु हैं कि अपने गुणों का वर्णन मेरी बुद्धि में डालकर मुझसे लिखवा रहे हैं। कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी 88 साल की उम्र में चैतन्य चरितामृत को लिखा, और क्या बोल रहे हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, सोच के देखिए। तो ये विनम्रता है, भक्तों को विनम्रता प्रकट करना चाहिए। तो स्तुति बहुत बड़ी है, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। किसी ब्राह्मण में यदि 12 योग्यताएं हो पर यदि वो भक्त नहीं है तो भगवान के चरणों के कमल से विमुख है, तो चंडाल से भी अधम है। तो इस प्रकार वो बोल रहे हैं कि भगवान मैं तो किसी योग्य नहीं हूं। बोलते हैं कि वास्तव में कोई व्यक्ति स्तुति करता भी है और आपका गुणगान भी करता है भगवान, तो आप तो सदैव आत्मसंतुष्ट रहने वाले, उसकी प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है आपको। बोलते आप तो उसी समान हैं जैसे किसी कोई व्यक्ति दर्पण में अपना चेहरा दिखता है तो वो खुद सुंदर है, इसलिए दर्पण में चेहरा खुद सुंदर दिखता है, तो दर्पण को घमंड नहीं होना चाहिए। तो भगवान तो सुंदर है ही, भगवान का दर्शन करके तो हर व्यक्ति उनकी स्तुति करेगा, तो इसमें ये व्यक्ति को सोचना चाहिए अरे मैं कितनी स्तुति कर रहा हूँ, कितना अच्छा बोल रहा हूँ। जैसे हम लोग कीर्तन होता है तो हमें डांस करने लगता है, मन खुश होकर डांस करने लगता है, नाचने लगते हैं, तो हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत अच्छा नाचते हैं या बहुत अच्छा बजा रहे हैं या बहुत अच्छा गा रहे हैं या बहुत अच्छा वर्शिप कर रहे हैं। नहीं, ये तो भगवान का नाम और भगवान का रूप ऐसा है कि हमें अपने आप करने के लिए मजबूर कर देता है। असल में हम लोग इस कारण इसके लायक नहीं है। अगर कीर्तन नहीं होता, हरे कृष्ण मंत्र नहीं होता, भक्त नहीं होते, प्रभुपाद नहीं होते, ये वर्शिप नहीं होता, कीर्तन नहीं होता, तो हम सब नाचने को जगह मिलता? किसी शादी में घोड़ी के सामने नाचते रहते, ठीक है, दूसरे दिन थके रहते, इलाज कराते रहते अपना, नहीं। भैया भक्त लोग जब डांस करते हैं तो कोई इलाज करा नहीं जाते, थकते नहीं है, उसके बाद भी सेवा करते हैं खूब बढ़िया से, क्योंकि भगवान का जब अपने पर असर होता है ना भगवान की चीजों का, तो सब कुछ दिव्य हो जाता है। उस समय शरीर नहीं, आत्मा नाचती है। तो ऐसे बोल रहे हैं, वह बौद्ध जीवन को पवित्र बना सकता है यदि वह भगवान की प्रार्थना करे और यश का श्रवण करे, क्योंकि वह दिव्य पद को प्राप्त कर लेता है। लेकिन भगवान ये भयानक रूप आपका प्राकृत स्वांतर सुखा सुख के लिए आपकी लीला है। तो भगवान को वास्तव में नरसिंह लीला जो हुई थी वो भगवान चाहते थे कि मैं क्रोध प्रकट करूं। भगवान की इच्छा थी कि मैं कभी क्रोध नहीं किया, मैंने हमेशा दया ही की है, क्रोध कैसे प्रकट करूंगा, तो मेरे तो सारी संतान तो मेरी है, जैसे घर में 10-15 बच्चे हैं और सभी आज्ञाकारी हैं, या सभी किसको मारे हैं किसको पीटे हैं, बहुत दिन से कुछ हाथ साफ नहीं हुआ है, क्रोध करने के लिए कुछ होना चाहिए। ऐसे बचपन मुझे याद है कि मेरे बड़े भाई से कहते थे जब उनको बहुत दिन से किसी को पिटाई नहीं किया, बोले इधर आओ 17 का टेबल बोलो, 17 का टेबल तो अभी पड़े नहीं है हम लोग। क्यों पड़े नहीं हो? इतने बड़े हो गए 17 टेबल नहीं आता, छड़ी लेकर आओ, मारना शुरू। तो किसी को मार रहा है तो कुछ भी बहाना बोल सकते हैं। पुलिस जब रोक लेती है तो चालान करेगी, लाइसेंस का है लाइसेंस है, पेपर का गाड़ी का ही पेपर है, चला वो आपके क्या क्या बोलते हैं उसको, पोल्यूशन कार्ड है बना, वो भी है। तुम गाड़ी रेड लाइट क्रॉस करके, नहीं नहीं मैं किया नहीं, झूठ बोल रहे हो, पुलिस झगड़ा करो तो चालान कर दूंगा। पुलिस झगड़ा करने का दो दो केस लगा दूंगा, एक तो रेड लाइट को क्रॉस करने का, दूसरा पुलिस से बहस करने का। तो वो कुछ भी कर सकता है, तो जो बोलता मान लेना चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब है भगवान अपनी लीला करने के लिए, क्रोधित होने के लिए सब क्या किए हैं। जय और विजय को भगवान ने असुर बनाया। कथा इस प्रकार है कि जब चार कुमार वैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे तो अंतिम द्वार में प्रवेश करने गए तो जय और विजय ने रोक लिया, भाई आगे तो नहीं जा पाओगे, हम तो यहाँ गेट के वो हैं, जानते नहीं हम लोग। तो बोले आप वैसे नग्न हो और किसी बिना अनुमति के अंदर आ रहे हो तो आगे तो नहीं जा पाओगे। तो उन्होंने बोले कि हाँ आप मुझे रोक रहे, हमें रोक रहे हो, सोचे बच्चे हैं और यहाँ तक आ कैसे गए। तो उन्होंने बताया कि हम ऋषि मुनि हैं, योगी हैं। तो और हंसने लगे, तो उन्होंने क्या श्राप दे दिया, वैसे तो तुम वैकुंठ में रह रहे हो पर वैकुंठ के रहने योग्य नहीं हो, इसलिए हम श्राप देते हैं कि तुम असुर बनोगे। तो भगवान बाहर देखे गेट पर क्या हलचल हो रहा है, क्या झगड़ा हो रहा, क्या हुआ, बोलते चलो देखते हैं। बाहर पे गेट पे गए, उन्होंने देखा तो चार कुमार और जय विजय बीच में बहस हो रही है। तो बोले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये तुम लोग की गलती नहीं, ये मेरी इच्छा है। तो याद करो जय विजय आपने कहा था कि भगवान हम तो द्वार पर खड़े रहते हैं, आपके साथ करीब आकर कोई सेवा नहीं करते, तो मेरी इच्छा थी क्रोध प्रकट करने की, आपकी इच्छा थी सेवा करने की, मेरी इच्छा थी युद्ध में युद्ध का आनंद लूं। जैसे कोई व्यक्ति युद्ध को सीखता है ना, तो उसको युद्ध प्रकट करने के लिए स्थान चाहिए, नहीं तो उसको बहुत कष्ट होता है, बहुत बेचैनी होती रहती है। एक प्रभु जी उनका ड्राइवर था, वो पहले ना अखाड़े में जाता था, अखाड़े में जाकर ना मल प्रैक्टिस करता था। तो उसके अंदर बोल रहे प्रभु जी मैं जब बहुत ज़्यादा अखाड़े में जाता कि मेरे अंदर शक्ति आ गई ना, तो मुझे कंट्रोल नहीं होता, लग रहा किसको पौड़ कर दबा दूँ, बस ऐसा लगता था, बरोड़ दूँ किसी को, पटक दूँ, यही लगता रहता था, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं एक दिन अखाड़े से जा रहा था, सामने में एक व्यक्ति दिख गया, मैं इसी को पटक देता हूँ बस, ध्यान नहीं दिया, मतलब ताकत में अंधा था, उसको उठाया नीचे से पटक दिया, उसको बोला मजा आया। बाद में देखा तो सरपंच था गांव का, बोलता प्रभु जी तब से गांव छोड़ दिया हूँ, इसलिए आगे हमारा खेती होती है तो बहुत बढ़िया ड्राइवरी करना पड़ रहा है। तो उन्होंने उसे शिक्षा बताई कि बल को कंट्रोल करना चाहिए। तो बोले इसलिए भगवान को भी इच्छा होती कि मेरे अंदर जो शौर्य है, मेरे अंदर युद्ध कला है, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई लड़े तो मुझे आनंद आए, उसको आनंद आता है। तो भगवान के बोले कौन लड़ेगा, ये छोटे मोटे राक्षस नहीं लड़ सकते, मेरा कोई भक्त ही लड़ सकता है, जो भक्त जगह पूरी इच्छा से सेवा करेगा ना, ऐसे नहीं कि भगवान अरे यार भगवान आप ही तो क्या लड़ना, छोड़ हटाओ, तो मजा नहीं आएगा भगवान को, भगवान को मरते तक लड़े। तो जय विजय ने ये इच्छा पूरी की, वराह रूप में वहां पर इच्छा पूरी करी या नरसिंह भगवान को रूप तरुण की। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान ये भयानक रूप ने जो धारण किया है, ये अपने सुख के लिए अपने लीला की है, आपको कोई सुख देने वाला नहीं है, ये हम स्तुति करके सुख दे दें, आपको खुश दे दें। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ये आपकी इच्छा थी लीला प्रकट करने की, हम तो बस सहायता कर रहे हैं, है ना। इसलिए ऐसा अवतार सदा ही ब्रह्मांड की रक्षा तथा सुधार के लिए निमित्त होता है भगवान। और बोल रहे हैं भगवान अपना क्रोध त्याग दें, क्योंकि मेरे पिता महासुर हिरण्यकश्यप मारा जा चुका है, क्योंकि सांप या बिच्छू के मारे जाने पर साधु पुरुष से प्रसन्न होते हैं। इसलिए बताया गया कि कोई सांप को देखकर कोई भक्त अगर लाठी से मार रहा है तो अब ये मैं सोचता ही कैसा व्यक्ति है, यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। वेदों में बताया गया है कि सांप और बिच्छू को मार देना चाहिए देखते साथ, बिना गलती के, चाहे साधु हो चाहे कुछ भी हो, मार देना चाहिए, यहाँ पर इसका उदाहरण दिया जा रहा है। अतः इस असुर की मृत्यु से सारे लोग की अत्यंत संतोष हुआ है, अब वे अपने सुख के प्रति आश्वस्त हैं और भय से मुक्त होने के लिए आप इस कल्याण अवतार का सदैव स्मरण करेंगे। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से श्रील प्रभुपाद जी मिलने गए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहीं पर बैठकर अपनी गायत्री कर रहे थे, तो सामने से देखा कि सांप आ गया और सीढ़ियों पर खड़ा है, प्रभुपाद जी के सामने खड़े थे, प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोल रहे थे। तुरंत एक शिष्य को बुलाया, बोला लाठी लेकर आओ, सब मार दो। गोपाल जी ने सोचा कि साधु एक सांप को कैसे मार सकता है, वह जीवात्मा है, विषैले जीवात्मा को कैसे मार सकता है। फिर भी तब उन्होंने प्रश्न समझ गया कि गोपाल जी के मन में आ रहा था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कई जो ग्रंथों से उद्धरण किया, एक ये भी श्लोक दिया कि जिस प्रकार चूंकि सांप और बिच्छू के मारे जाने पर साधु पुरुष प्रसन्न होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे लिखा है, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि बिच्छू को मारा जा सकता है, सांप को मारा जा सकता है, ये कोई गलत बात नहीं है, साधु पुरुष भी मारते हैं। हे रजत भगवान, मैं तो ना तो आपके भयानक मुख और जीभ से, ना कि सूर्य के समान चमकीली आंखों से, टेढ़ी भौहें से भयभीत हूँ, भयभीत नहीं बोल रहे, बाकी सब थे, मैं आपके तेज नुकीले दांतों से, आंतों की माला से, रक्त रंजित गर्दन के बालों से, ये वर्ज जैसे पहने कानों से नहीं डर रहा हूँ, ना ही मैं आपके भीषण सिंहनाद से भयभीत हूँ, जैसे हाथी भाग कर धूप चले जाते हैं, ना मैं आपके नाखूनों से भयभीत हूँ जो आपके शत्रु को मारने के लिए निमित्त हैं। हे पतितों के सदैव परम शक्तिशाली दुर्जय प्रभु, मैं आपके कर्मों के कारण असुरों के संगति में पड़ा हूँ, अपने कर्मों के कारण, अतएव मैं इस भौतिक संसार में अपने जीवन दशा से अत्यधिक भयभीत हूँ। मैं भयभीत किससे हूँ? आपसे नहीं हूँ। आप तो बड़ा मनमोहक दृश्य है आपका, श्रृंगार बहुत मनमोहक है, मैं भयभीत तो अपने कर्मों से हूँ, इस वातावरण से हूँ। वो क्षण कब होगा जब आप मुझे अपने चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे, जो बद्ध जीवन से मोक्ष के चरम लक्ष्य है। कैसी अद्भुत प्रार्थना है, भगवान सामने में है, अब बोल रहे मैं भौतिक संसार से भयभीत हूँ, मुझे अपने शरण में ले लो। ये नहीं बोल रहे कि आपसे भयभीत हूँ, बाकी लोग उल्टा थे, भगवान से भयभीत हो रहे थे, संसार से नहीं। अतः मैं सोचता हूँ कि एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना है, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा दें। भगवान को देखकर क्या बोल रहे हैं, सेवा दीजिए। हम भगवान को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, एक मिनट, ये मेरा लिस्ट है, भगवान कहाँ गया, ये लिस्ट है, एक एक करके पूरा करते जाइए, बड़े दिन बाद मिलो भगवान, गायब नहीं होना, देखना दरवाजा बंद कर दो। हमारा तो लिस्ट है, कितनी सारी इच्छा है हमारी, नहीं भगवान हमारे सामने आएगा तो खूब मांगेंगे हम। लेकिन क्या मांगना चाहिए, प्रहलाद महाराज 4 साल का बच्चा खिलौना गाड़ी पिस्तौल डॉल नहीं मांग रहा है, कुछ वस्तु नहीं मांग रहे, क्या मांग रहे हैं, सेवा, कि सिर्फ मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। अतएव और ऐसी कुछ सेवा का उपदेश दें कि मुझे क्या करना चाहिए, सेवा भी दें और उसका उपदेश भी दें, और बताइए कि किस प्रकार मैं ब्रह्मा तथा उनकी शिष्य परंपरा में, ब्रह्मा की शिष्य परंपरा कौन सी है, हमारी जो है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्मा की शिष्य परंपरा में पद चिन्हों पर ठीक से चलकर अपनी आपकी महिमाओं का कीर्तन करूं, और इस प्रकार से मैं अज्ञान के सागर को निश्चय पार कर सकूंगा, जबकि ऑलरेडी पार कर गए। जिसको बचाने के लिए भगवान आ जाएंगे तो उसको पार करने की जरूरत है, ऑलरेडी पार है नैया, लेकिन फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं। बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जब मृत्यु के समय आ जाता है, या कोई बीमार व्यक्ति पर दवा काम नहीं करती है, तो कुछ नहीं कर सकते, सब लोग क्या करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, तो ये बात समझ में आती है कि जैसे भगवान भगवत गीता बोलते हैं ना, कौन्तेय प्रति जाने ही नाम भक्ति अपनुषति, हे कुंती पुत्र तुम घोषणा कर दो कि संसार में मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है, कि अगर मैं बोलूंगा तो लोग सोचेंगे भगवान तो अपनी बात बदल देते हैं, वचन देते तोड़ देते हैं, कि मैं चक्र नहीं उठाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, तो उठा दिया था ना पहिया, लेकिन तुम बोलोगे ना, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अपने भक्तों के वचन को निभाने के लिए भगवान अपने वचन भी तोड़ देते हैं, जैसे कि भीष्म पितामह ने वचन दिया था कि मैं हथियार उठवा लूंगा, तो भगवान ने बोला ठीक है मेरा तोड़ लेता, तुम्हारा बाकी उठा लेता, तो बोले इसलिए तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, और अगर ये बात तुमने घोषणा कर दी तो मैं किसी भक्त को कुछ नहीं होने दूंगा। तो भगवान ये आपने तो वचन दिया है, इसलिए आप मेरी रक्षा करो, किस रक्षा करो, ये बहुत ही संसार के कलमस मुझे सता रहे हैं। प्रहलाद महाराज 4 साल का बच्चा बोल रहा है, ध्यान में माइंड में रखिए 4 साल का बच्चा बोल रहा है, और हमारी स्तुति क्या होती है, सुख संपत्ति कर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ये भगवान हमारे घर में सुख संपत्ति आ जाए, कष्ट मिटे कमर दर्द का, गर्दन दर्द का, स्पाइनल इंजरी का, सिर दर्द का, पैरों में कौन था? भगवान हम ये प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना नहीं करते, सेवा में लगा दो भगवान, भगवान को सेवा लगाते हैं। हे भगवान आप रोज आइए मेरे हृदय में, मैंने कल से बहुत सारा कचरा इकट्ठा किए दिया है, उसको साफ करिए, कल फिर आना, मैं आपको सेवा में लगाए रखूंगा। आप, मैंने सुना है आप आधा आंख खोल के सोते हैं योग निद्रा में, क्षीर सागर में, तो मैं आपको बिजी रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कुछ ना कुछ कुटपटांग करता रहूंगा, आप आते रहिएगा, ये मेरी लीला है। ऐसे नहीं, क्या बोल रहे हैं भगवान, आप तो रक्षा करते ही हैं, लेकिन हमारा कार्य क्या है, आपकी स्तुति करना। और बोलते हे प्रभु, हे भगवान, मैं एक के बाद एक भौतिक इच्छाओं की संगति में आने वाले समान लोग का अनुगमन करते हुए सर्व से भरे अंधे कुएं में गिरता जा रहा था। क्या बोल रहे हैं, इतने राक्षसों के बीच पैदा हुए हैं और क्या बोल रहे हैं कि मैं इन लोगों का अनुगमन करने लग गया था, तो क्या ऐसा नहीं था, है ना? और क्या हो रहा था, मैं गिरा जा रहा था अंधकूप में, किंतु आपके दास नारद मुनि ने मुझ पर कृपा की, अपना शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया, मुझे शिक्षा दी कि दिव्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, अतः मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। आप समझे बात को? हाँ, भला मैं उनकी सेवा क्यों कैसे छोड़ सकता हूँ, है ना? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भीज, ब्रह्मांड भ्रमित वे कौन भाग्यवान जीव। ब्रह्मांड में एक कोई व्यक्ति होता है, जीव कितने भटक रहे हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है, तब जाकर भक्ति प्रारंभ करता है। तो मैं तो एकदम गिरा हुआ था, नारद मुनि ने कृपा की, तो मुझे उनकी सेवा में जरूर लगाना, मुझे ऐसी सोई सेवा मत देना जिसमें नारद मुनि की सेवा ना हो, तो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये बात समझने वाली बात यहाँ पर है कि जब कोई व्यक्ति, प्रहलाद महाराज ने दो काम किए गुरु के प्रति, एक तो भगवान का दर्शन करते क्या मांगा, सेवा, गुरु की सेवा मांगी, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे कि शुद्ध भक्त की सेवा मांग रहे हैं। और दूसरा क्या किया, हिरण्यकश्यप को कभी नहीं बताया कि नारद मुनि ने शिक्षा दी है, क्यों? अगर ऐसा कहते तो हिरण्यकश्यप नारद मुनि को मारने के दौड़ते, गालियां देते, और इसका कारण कौन बनते हैं, प्रहलाद महाराज, इससे उनका अपराध लगता। तो इसलिए अपने गुरु की बचाने के लिए कभी कभी शिष्यों को, शिष्यों को नाम नहीं लेना चाहिए, या कभी भी आपसे कोई गलती हो गई तो आपसे पूछे आप कौन हो, तो अपना नाम बताइए, ये मत बताइए कि मैं इस संस्था से हूँ, यहाँ से, वहाँ से हूँ, क्यों आपने गलत काम किया है और उस संस्था को क्यों ला रहे हैं, गुरु को क्यों ला रहे हैं, तो अच्छा काम करते हैं तब बोलना चाहिए। जैसे बच्चे हैं या कोई बिजनेसमैन है, बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, तो जब इंटरव्यू पूछते हैं कि आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है, बोलते हैं कि भगवान से मिलती है प्रेरणा, मैंने भगवत गीता पाठ किया है, भगवान भक्तों का संग किया, मैं कौन से हूँ इसलिए प्रगति कर रहा हूँ। जब ऐसे बोलेंगे तो क्या होगा, उनका नाम होगा, उनका सम्मान होगा, तो भगवान प्रसन्न होंगे। और गलती हो जाती तो क्या बोलना चाहिए, मैंने किया खुद, मैं तो इतने अच्छे वातावरण में रहकर भी भक्त नहीं बन पाया, जैसे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, ये शिक्षा है। लेकिन हम लोग कभी कभी उल्टा कर जाते हैं, छूना नहीं मुझे, गलती होगी तो क्या होगी, हम इस्कॉन के हैं, हम तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए तीनों लाइट को देखेंगे नहीं, क्रॉस कर जाएंगे तीनों लाइट से, आगे पुलिस पकड़ लेती है, बोले इस्कॉन के हो, चलो इस कान के हो, नहीं रहो ससुराल चलो, ससुराल ले जाते हैं फिर। तो हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत के तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। अब उल्टा बोल रहे हैं आगे, मैं भौतिक जगत से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि जहां जहां मैं जाता हूँ वहां के आपके यश और कार्यकलाप के विचारों में लीन रहता हूँ, इसलिए भयभीत नहीं हूँ। जैसे यहाँ पर बेसमेंट में बैठे हुए सबको भयभीत नहीं, कोई भयभीत नहीं है, किसको डर नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, किसी को याद भी नहीं है क्या हो रहा संसार में, है ना? मैं एकमात्र उन मूर्खों और धूर्तों के लिए चिंतित हूँ। कौन उन, किसके बारे में बोल रहे हैं, हम लोग के बारे में, है ना? सब संसार नहीं, हम ही लोग के बारे में। मैं एकमात्र उन मूर्खों और धूर्तों के प्रति चिंतित हूँ, उन जो बैठे हैं हम लोग सब लोग इंक्लूडिंग मी, जो भौतिक सुख के लिए अपना परिवार, समाज और देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। और मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेम वश चिंतित हूँ, चिंता कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं साधु पुरुष जो होते हैं सामान्य जनता के लिए चिंतित होते हैं, कि बोलते हैं हम लोग का तो उद्धार हो जाएगा, हम भगवान के बारे में लगे रहते हैं, इन सामान्य जनता का क्या होगा, तो सोचती भी नहीं है। तो भगवान इनके लिए कुछ कीजिए, है ना, एक सेंटर खोलिए भांडीरवन नाम का। तो भगवान खोजो खुला दिया। तो अब बोलते हैं ये जो श्लोक है, इस श्लोक का पहले भी वर्णन हो चुका है, इसका थोड़ा डिटेल में वर्णन किया है। बोलते हैं विषय जीवन की तुलना में संसार के लोग खुजली दूर करने के लिए दोनों हाथों को रगड़ने से की गई है। जैसे हम लोग खुजली करते ना, तो खुजली होती है तो बिना खुजला रह नहीं जाता है, जब किसी की खुजली हो उसका हाथ वाला पकड़ लेना, फिर देखना उसको कैसा लगता है। तो ग्रह मेरी अर्थात तथाकथित गृहस्थ जीवन, जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जो सो कॉल्ड जो एक्चुअली नहीं होते हैं, सोचते हैं खुजलाना उत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वो दुख का जड़ है, खुजलाने से खून निकलता है। वैसे ही तो वे सोचते हैं कि इंद्रिय भोग का जीवन जिएंगे पर वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, और भोगते भोगते क्या हो जाते हैं, नरक की ओर चले जाते हैं, सहन नहीं करते हैं। जो महान व्यक्ति है वो क्या करता है, सहन करता है। नारद मुनि बोलते हैं इस प्रकार अपने भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा दिव्य पद से प्रार्थना किए जाने पर भगवान नरसिंहदेव शांत हो गए और उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और दंडवत प्रणाम करने वाले प्रहलाद को अत्यंत दयालु होने के कारण से इस प्रकार बोले। अब पहली बार फर्स्ट वर्ड बोल रहे हैं कौन, भगवान नरसिंह भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान हे सौम्य प्रहलाद, हे असुरों में उत्तम, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं हर जीव की इच्छा पूर्ण करने में हर जीव की इच्छा पूर्ण करने ये मेरी लीला है, इसलिए तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांग सकते हो। वर मांगने के लिए बोल रहे हैं। हे प्रहलाद, तुम दीर्घ जीवी हो, मुझे प्रसन्न किए बिना कोई ना तो मुझे जान सकता है और ना मेरे महत्व को समझ सकता है, किंतु जिसने मेरा दर्शन कर लिया या मुझे प्रसन्न कर लिया उसे अपनी तुष्टि के लिए पछताना नहीं पड़ता, किसी और कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को प्रसन्न करके भगवान को जान सकते हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ, मान लीजिए रमेश को जानिए, पहला प्रश्न आपके दिमाग में क्या आएगा, ये रमेश कौन है, पहला प्रश्न आएगा रमेश कौन है। रमेश है जो यहीं से चार घर दूर में रहता है, उसकी दुकान है और वहाँ दुकान में रहता है, दुकान घड़ियाँ बेचता है, तो उसके बारे में जानकारी लेकर आइए। तब क्या करेंगे, बोलेंगे आप जाओगे बोले कि एक्सक्यूज मी, आप अपने बारे में बताएंगे क्या, बोले तुम कौन हो, तुम्हें क्यों बताऊं मैं, कौन हो तुम, नहीं बताएगा व्यक्ति। लेकिन जब उसकी जानने वाले व्यक्ति से मिलोगे या उनकी सेवा करोगे तो वो अपने आप रिवील कर देंगे, जब उससे दोस्ती कर लोगे सब बताएगा, ATM नंबर तो बता देगा अपना। तो बोले इसलिए जो मुझे प्रसन्न कर लेता है उसी को मैं अपने बारे में बता पाता हूँ। तो भगवान को जानना तो भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो भगवान तुम्हारे समक्ष है नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, उनके भक्तों को, जैसे कि इस व्यक्ति को जानना, उसके प्रिय मित्र की सेवा करोगे तो प्रिय मित्र सब कुछ बता देगा, और प्रिय मित्र की सेवा देख कर हो सकता है आपको वो असली व्यक्ति जिसको जानना चाहते हैं वो बता देगा, इसलिए ये विधि है, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं इसलिए अपनी तुष्टि के लिए किसी पछताना नहीं पड़ता, अपने आप उसको सब कुछ बता देता हूँ। हे प्रहलाद, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो, तुम मुझे जान लो कि जो अत्यंत बुद्धिमान तथा प्रगत है वे सभी विभिन्न भावों द्वारा मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि मैं ऐसा पुरुष हूँ जो हर एक की सारी इच्छाओं को पूरा करता हूँ। तो ऐसा उन्होंने बताया और भगवान उनको बोले लगे, लेकिन भगवान की बातों को सुनकर उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ये मेरा लिस्ट है, चलो बहुत देर से सोच रहा निकाल लूँ कि नहीं निकाल लूँ, आपने बोल ही दिया तो मांग ही लेते हैं, नहीं। कभी कभी होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति संतुष्ट है, पेट भरा हुआ है, उसको बोले आओ खा लो, बोले नहीं नहीं मुझे भूख नहीं, मैंने तो पूरा भोजन किया अच्छे से, बोले नहीं नहीं खा लो, तो नहीं खाता, फिर भी खाना नहीं खाता क्योंकि पेट पूरी तरह भरा हुआ। लेकिन कोई भूखा व्यक्ति है उसे बोले हो गया आओ भोजन खा लो, अच्छा व्यंजन बने हैं आपके लिए, स्पेशल डिश बना हुआ, तो पहले शर्म के बारे में बोलता है नहीं नहीं मुझे ठीक है ऑल राइट, बोलते नहीं नहीं खा लो, बहुत सारे जो तुम चाहोगे वो मिल जाएगा खाने के लिए, अच्छा क्या मिलेगा खाने के लिए, आदमी की एकदम इच्छाएं बढ़ जाती है। लेकिन जो संतुष्ट है उसकी इच्छाएं नहीं होती है, संतुष्ट व्यक्ति क्या बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता था, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और देवदूत को भेजते हैं, विष्णु दूत को भेजते हैं, बोलते जाओ और मेरा भक्त है जो मेरा नाम ले रहा है उसकी कोई इच्छा हो, भौतिक इच्छा, कोई भी इच्छा हो तो उसकी पूरी कर देना, ठीक है। तो व्यक्ति जाता है, व्यक्ति के पास प्रकट होते हैं विष्णु दूत, बोलते कि भगवान प्रसन्न हो के मुझे भेजे, जो मांगना मांग लो। तो बोलते कि मैंने कभी ये सोच के कुछ भगवान का नाम नहीं लिया। बोलते नहीं नहीं मैं तो वर देने आया हूँ, बस आप मांगो, मेरा काम वर देना, कुछ ना कुछ मांगो। तो बोलते हैं अच्छा तो मैं कल मांग सकता हूँ क्या? बोला कल मांग सकते हो, कल मैं आ जाऊँ, कोई बात नहीं है, कल इतना बजे आ जाना तो मैं वरदान दे दूंगा जो मांगोगे। वो घर जाता है और अपनी पत्नी से चर्चा करता है, बोला देखो कल मुझे ऐसे जैसे हुआ, आज मेरे सामने विष्णु दूत आगे पता नहीं सही है कि क्या है, लेकिन उन्होंने बोला कि वर मांगो, तो मैं तो कुछ मांग नहीं पाया। बोले तुम मूर्ख हो, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, संतान मांगना चाहिए ना, बेटा नहीं कोई हमारा, घर का चिराग मांगो। बोलते हाँ ये बात सही, मैं मुझे यही मांगना चाहिए। फिर वो जाता है, बोलते कल सुबह जाऊँगा और फिर ये मांग लूँगा। तो बिस्तर सोने जाता है, बोलते हैं मेरे माता पिता भी हैं, उनसे भी पूछ लेता हूँ उनकी इच्छा क्या है। तो माता के पास जाते हैं, बोलते हैं कि माता ऐसे ऐसे हुआ था तो मुझे वरदान मांगने बोला, तो मैं तो कल पुत्र मांगने जा रहा हूँ। बोलते हैं मैं पुत्र लेके क्या करूँगी जब मेरी आँखें ही नहीं है बेटा, आँखें मिल जाती तो मैं तुम्हें कम से कम तुझे देख लेती, पोते को देखे करूँ जो बेटे को नहीं देख पाया, मेरी आँखें मांग लेना तू। आप ये बोलते हैं कि बेटा चाहिए ये मेरी माँ की आँख, कन्फ्यूज, वरदान तो एक ही है। बोलते हैं कि चलो पिताजी से पूछ लेता हूँ, पिताजी के पास जाते हैं, पिताजी क्या क्या मांगना चाहिए, ऐसे ऐसे घटना घटी है। पिताजी बोलते हैं कि वो आँख लेके क्या करेगी, हाँ भीख मांगते देखेगी तुम लोगों को, घर में धन नहीं है कुछ, आँख लेगी। अब बेटा क्या करेगा, कटोरा लेके भीख मांगेगा, तुम भी मांग रहे हो ये भी मांगेगा, मैं ऐसा कुछ नहीं देखना चाहता हूँ, धन मांग, धन पैसे घर भर भराओ, अरे गोद ले लेंगे इसकी आँख ठीक करवा लेंगे। तो दिमाग लगाते हैं पिताजी, तो बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये क्या चक्कर है, पूछ रहे नहीं था, बताना नहीं था स्टोरी, अब क्या करा जाए, कन्फ्यूज हो जाता है, रात भर नींद नहीं आती है। सबसे पहले उठ के क्या करता है, मोबाइल को रिसीव करता है सुबह सुबह और बाहर जाता है और जाके अपने मित्र से मिलता है और बोलता है, फूल लगाकर पूछता है
क्या मांगना है,
कि क्या मांगना चाहिए, तीन तीन वरदान एक डिमांड तीन, करे क्या, बहुत मुसीबत में पड़ा हूँ। कॉल फ्रेंड बोलते हैं ना, ऑप्शन होता है, तो फ्रेंड क्या बोलता है, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ वो मांगना। तो फ्रेंड बहुत बुद्धिमान रहता है, वो जाता है और दूसरे दिन विष्णुदूत आता है, उनसे क्या बोलता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी माँ मेरे बेटे को एक सुनहरे महल में खेलता हुआ देखे। तीनों एक ही साथ हो गया, है ना, मेरी माँ देखे तो आंखें आ जाएगी बिना के देखे कि नहीं, बेटे को तो बेटा भी आ जाएगा, सुनहरे महल में तो दूसरे के महल थोड़ी खेलेगा, अपने सुनहरे महल में खेलता दिखे। तो बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्ति है, दिमाग किसने दिया, बोलते मेरे मित्र है, मेरे गुरु है वो। तो भगवान से क्या मांगना है ये गुरु से सीखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही व्यक्ति को बोला गया, राजा बोला कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, सब जो मांगना मांगो, सब कुछ कुछ मांगने लगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ये व्यक्ति आया वो कुछ मांगने, तो बोले तुम मांगो, बोले नहीं मुझे कुछ इच्छा नहीं है, बोले नहीं मैं कुछ देना चाहता हूँ, बहुत प्रसन्न, कुछ मांगो। तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने कहा कि आप बस कुछ नहीं, मेरे घर में निवास कीजिए कुछ दिनों के लिए। बोले ये यार कुछ पैसे से मांगो बाबा, निवास क्या करना, बोले नहीं एक महीना हमारे घर में निवास कीजिए। तो राजा बोला ठीक है एक महीना रह लेंगे आपके घर में, इसमें क्या है, मंत्री आज से मैं एक महीना इस व्यक्ति के घर में रहूंगा, सारी व्यवस्था की जाए, उसे घर को महल बना देते हैं, धन से भर देते हैं, नौकर चाकर सब कुछ। तो कोई ऐसे राजा के लिए कोई नकली चीज नहीं बनाएंगे, परमानेंट महल बना देते हैं, धन से भर देते हैं, अन्न भर देते हैं, नौकर चाकर परमानेंट हो जाते हैं। तो एक महीने के बाद वो जाता है तो बोलते है ये सब तुम्हारा है, रखो मैं साथ में लेना नहीं चाहता। तो भक्तों को छोटा मोटा नहीं चवन्नी अठन्नी माना चाहिए। टाटा बिल्डर के पास क्या क्या चीज तुम्हें चवन्नी दे दो, बहुत दिन से देखा नहीं मैंने मार्केट में। तो क्या पागल यार, कुछ और मांग ले, अठन्नी दे दो एक और अठन्नी। या तो समझा करो बात को, मेरे पास करोड़ रुपए है, तुमको बहुत कुछ दे सकता हूँ। अच्छा वो 20 पैसा आता था ना गोल वाला, वो दे दो। अपमान नहीं है टाटा बिल्डर का? कितना बड़ा अपमान है, करोड़पति अरबपति चवन्ने ढनी मार रहे हो, जो मार्केट में नहीं चलता है। अरे सोच समझ के मांगो, भगवान के पास गए हो, भगवान से क्या मांग रहे हो? भगवान कार दे दो कार दे दो, अहंकार तो पल्ली से ही है। एक और मांग रहे, एक और कार दे दो, अहम कार, जितना बड़ा कार उतना बड़ा अहंकार, बाकी सब बेकार। तो मांगने के पहले सोचना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज नहीं मांग रहे, क्या बोल रहे, भगवान मुझे आपकी सेवा दे दीजिए तो आपके धाम में रहूंगा ना, संसार से मुक्ति, खुशी खुशी, टेंशन फ्री। नहीं तो क्या करते हैं, पांचवी पास करा दो, छठवी पास करा दो, आठवीं पास करा दो, टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ, हर साल नल फोड़े जा रहे हैं वहां पर जाके, है ना। फिर कॉलेज में करा दो, फिर अच्छी शादी करा दो, अच्छा नौकरी दिलवा दो, फिर बच्चे का सेंट्रल स्कूल में एडमिशन करा दो। मांग ही रहो शुरू से, पैदा हुए भी मांगने के लिए। बिजनेस मैंने कहा भगवान को, भगवान पास करा दिया फर्स्ट डिवीजन से 10 नारियल, रैंक बनाया तो 20, तो भगवान ऐसा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि इसलिए मैं तुम्हें क्या देने वाला हूँ, नित्य सेवक के रूप में तुम्हारा स्थान देने वाला हूँ। तो ये स्तुति करने के बाद ये अध्याय समाप्त होता है, जिसमें भगवान की प्रार्थना करते हैं। हालांकि 55 श्लोक है, मैंने आपको सिर्फ 8 या 9 श्लोक बताए, तो ये आप लोगों को होमवर्क है। इस प्रसंग का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है ये, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं जो है, प्रार्थना है, ये जरूर पढ़ना चाहिए। तो अंत में कुछ श्लोक और हैं, मैं जो आगे का अध्याय से बताऊंगा, सुनिएगा। तो नारद मुनि बोलते, यद्यपि प्रहलाद महाराज बालक थे, किंतु जब उन्होंने नरसिंह द्वारा दिए गए वरों को सुना तो उन्होंने इन्हें भक्ति के मार्ग में अवरोध समझा, है ना। जब वे विनित भाव से मुस्काए और इस प्रकार बोले, कौन? प्रहलाद महाराज। किससे? ऋषिकेश से, भगवान से। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, नास्तिक परिवार में जन्म लेने के कारण मैं स्वभावतः भौतिक भोग के अनुरक्त हूँ। क्या बात बोल रहे, सोच के देखिए, मैं तो जब पढ़ रहा था, क्या विनम्रता है, क्या बोल रहे हैं, मैं भौतिक भोग के अनुरक्त हूँ, नास्तिक परिवार में जन्म लिया हूँ, जब शुद्ध भक्त हैं, गर्व से ही भक्ति उनके अंदर। अतएव आप मुझे इन मोह से मत ललचाइए, ये लालच मत दीजिए, मैं कहीं मांग ना लूं। मैं भौतिक दशाओं से अत्यधिक भयभीत हूँ, ये भौतिक दशा जो आसपास का वातावरण है, और भौतिकवादी जीवन से मुक्त होने का इच्छुक हूँ, यही कारण कि मैंने आपके चरण कमलों के शरण ग्रहण की है। फिर से वही लालच मत दीजिए मुझे, हे मेरे आराध्य देव, चूंकि हर एक के हृदय में भौतिक संसार के मूल कारण कामेच्छाओं के बीज रहता है, अतः आपने मुझे इस भौतिक जगत को शुद्ध के लक्षण प्रकट करने के लिए भेजा है, शुद्धि के लिए। तो ये सब क्यों बोल रहे हैं आप, है ना। अन्यथा हे भगवान, ये समस्त जगत के परम शिक्षक, आप अपने इस भक्त के प्रति अत्यंत दयालु हैं कि आपने उससे कुछ भी ऐसा करने को प्रेरित नहीं किया कि इसके लिए अलापकारी हो। दूसरी ओर जो व्यक्ति आपकी भक्ति के बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहता है, वो आपका शुद्ध भक्त नहीं हो सकता, वो तो उस व्यापारी की तरह है जो कि सेवा के बदले में लाभ चाहता है। तो मुझे व्यापारी मत समझना, मैं व्यापारी नहीं हूँ कि आप मुझे कुछ धन दोगे या मैं कुछ आपको कुछ दूंगा उसके बदले में पैसे लूंगा। मैं तो निष्काम भाव से आपकी सेवा करने आया हूँ। भगवान को बिजनेस मैन है क्या? 4 नारियल चढ़ा दिए, बोले कुछ बदले में दे दो, 10 नारियल चढ़ा दिए, मैं हे माता रानी आप पर चादर चढ़ाऊंगा। बिजनेस मैन है सब लोग क्या? हमारा नेचर बिजनेस करने का, हम आपस में लोगों के साथ यही करते हैं। उसकी शादी में गए थे तो उसने कितने रुपए दिए थे जरा देखना, डायरी निकालना, 100 रुपए दिए थे, 99 रुपए कम से कम तो होना ही चाहिए, अधिक अधिक 100 रुपये, इससे ज्यादा का मत देना। लोग ऐसे करते थे, बिजनेस हो गया, प्रेम कहाँ है? प्रेम में कोई ऐसा चीज नहीं होता है, प्रेम का मतलब होता है आपका हृदय जितना उदार हो उतना करें, उसमें कोई वस्तु नहीं होती है, कोई कीमत नहीं होता है, प्रेम का कोई कीमत नहीं होता है। भगवान के लिए आप भक्ति करते हैं तो एक फूल से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम थोए जो में भक्तिया प्रपचति, भगवान बोलते हैं पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, सो लाइक एक गिलास पानी दे दो, ठीक है। भगवान कोई इतना बड़े बड़े डिशेज नहीं मांग रहे खाने के लिए, तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मैं व्यापारी नहीं हूँ कि बदले में कुछ चाहूंगा। और बोलते हैं सेवक जो अपने स्वामी से भौतिक लाभ की इच्छा रखता है वो निश्चय ही योग्य सेवक शुद्ध भक्त नहीं। इसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक के लिए आशीष देता है कि स्वामी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बने रहे वो भी शुद्ध स्वामी नहीं है। कभी कभी ऐसे होता ना कि सेवक आता है कुछ बोलता है कि इसकी चापलूसी करूंगा तो बड़ा फायदा हो जाएगा, तो स्वामी भी कभी कभी बोलता है ये खाते रहो मैं तुम्हें देता रहूंगा, तुम्हें ये पता रहेगा कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तो वो स्वामी भी नहीं है और वो सेवक भी नहीं है। हे प्रभु आपका निस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप स्वाभाविक मेरे स्वामी हैं और स्वभाव तो मैं आपका सेवक हूँ। सारे जीवात्मा भगवान के स्वाभाविक सेवक हैं, स्वाभाविक है, पर हमने क्या किया ना ऊपर में एक एक कवर चढ़ा लिया है, इस कारण से कोई संबंध याद नहीं आता हमें। मतलब अपनी इच्छाओं की परत चढ़ा ली अपने ऊपर में। सोचिए आज के जीवन में पति पत्नी बच्चों का माँ बाप से पड़ोसी से कैसा संबंध है, मतलब से है ना, मतलब परस्त है दुनिया, काम निकल रहा है इससे कैसे, इसलिए बस संबंध बनाए रखे हैं। बताते हैं कि आज की दुनिया में जो रिश्ता होगा वो किसी मतलब पर आधारित होगा, मतलब निकलते ही कमरे में घर जाओ। अब तुम बूढ़े हो गए हो यहाँ क्या कर रहे हो, तो बोले बेटे मैंने तुम्हें कमा के खिलाए पिलाए बड़ा किया। बोले तो तुम्हारा कर्तव्य था, पिता का कर्तव्य नहीं होता है क्या, कर्तव्य पूरा कर लिया ना, आप देखो अपना रास्ता, आप खुद जा रहे हो कि हम छोड़ने जाए। लोग ऐसे होते हैं, काम निकलते ही मुख मोड़ लेते हैं। तो बोलते हैं जब तक स्वाभाविक नहीं होगा ये कार्य, जैसे कि भगवान के दासों का होता वैसे, तब तक प्रेम नहीं है। हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि आप मुझे कोई वांछित वर देना चाहते ही हैं तो मुझे आपसे एक ही प्रार्थना है। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, BMW दे दीजिए, है ना, मैरून में एक फ्लैट दे दीजिए। इतना सब बोलने के बाद लोग ऐसे ही बोलते हैं नहीं नहीं हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही हम तो कुछ लेते नहीं, हम तो कुछ मांगते भी नहीं, हम तो किसी से मांगे भी नहीं है, 1 करोड़ तो हम कहाँ रखेंगे ना, 1 करोड़ दे भी दे तो कहाँ रखेंगे, आप 50 लाख दे दीजिए बस। देखिए बहू तो घर आ रही है, हमें तो लक्ष्मी चाहिए बहू, हमें और कुछ नहीं चाहिए, 2 कपड़े भेज दीजिए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोग बोलते ना जब वो दहेज मांगते हैं तो सामने बोलते कितने अच्छे लोग हैं ना ये लोग, है ना, तो इतने बड़े विचार हैं, तो वैसे बोलते हैं और फिर धीरे से बोल लेते हैं जो आपकी इच्छा हो बेटी को देना चाहते हैं दे दीजिए 1-2 करोड़ जो भी आपकी इच्छा हो, है ना, ये तरीका है मांगने का। लेकिन भगवान के भक्त है क्या बोल रहे हैं, आप सर्वश्रेष्ठ दाता हैं, वरदाता हैं, स्वामी हैं, आप जो कुछ चाहे वर देना है दे सकते हैं, तो मेरी प्रार्थना एक ही है, एक ही प्रार्थना है कि मेरे हृदय से किसी प्रकार की भौतिक इच्छा ना हो, मैं कुछ मांगू नहीं आपसे, ये वरदान दे दीजिए। क्या मांगा है नहीं, जैसे एक भक्त आता है भगवान के पास बोलता है भगवान मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि प्रत्येक दिन मैं आपका दर्शन करूं बस, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान पूरा ख्याल रखेंगे ना उसका, एक्सीडेंट हो रहा है बचाना है उसको, कल दर्शन करने आ रहा है, भूखा खिला दो खाली दर्शन करने आना है, तो बुद्धिमानी से डिमांड करना चाहिए भगवान से। पर मेरी कोई भौतिक इच्छाएं हुई ना, जब कोई भौतिक इच्छा नहीं रहेगी तो कोई दुख कहाँ है, सारा दुख क्या है, भौतिक इच्छा का कारण है, ये आशा ही निराशा का कारण है। हम सब ने आशाएं लगा रखी है संसार से, माता पिता से, बच्चों से, गाड़ी से, मोबाइल से, नौकरी से, बिजनेस से, इस शरीर से, इस रूप से, है ना। 1:30 बजे रात को नींद खुलता तो आईना देखते हैं पहले कैसे दिख रहा हूँ। एक बार हॉस्टल की बात है, 1:30 बजे रात को मुझे नींद खुली तो एक व्यक्ति देख रहा आने में से कर रहा है, बोला 1:30 बजे रात को सो जाओ यार, चुप रहो, बाल झड़ रहे मेरे, देखा मैंने। ये हालत है लोगों की, कितना आसक्ति बाल से है ना, मेरे सुनहरे बाल एक दिन सब झड़ जाएंगे, सब जाने वाले हैं, ये उजड़ा हुआ चमन है। अब आजकल SMS आता है, हम लोग भी आता है SMS, हेयर लॉस डोंट वरी वी हैव सॉल्यूशन, बत्रा क्लिनिक, बत्रा क्लिनिक में संपर्क करें अगर आपके बाल झड़ते हैं। हम लोग भी आता है SMS आता है, हेयर ट्रांसप्लांट, यहां से वहां ट्रांसप्लांट करो, कभी किसी ने चेक नहीं किया बाल कहां से आता है ना। कई जानवर होते हैं उनके भी बाल होता है, उसे लगा देते हैं, तो लोग बाल की खेती करवा रहे हैं, सोचिए पैसे देके करोड़ रुपए, क्या इच्छाएं हैं, भूख एक जबरदस्त इच्छा है, बाल से आसक्ति कैसे हो सकती है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है। एक एक बाल को छेद करके गाड़ा जाता है, उसकी बुआई की जाती है, ऐसा होता है, धान की खेती करते हैं जैसे, ऐसे आपको ले जाएंगे छेद करेंगे बाल लगेंगे, छेद करेंगे बाल लगेंगे मशीन से, फिर वहां इनाम देखेगा ऐसे आएंगे, मतलब किसी ने ऐसे किया 1 करोड़ रुपए चला गया। बहुत महंगा होता है हेयर ट्रांसप्लांट, लोग महंगे महंगे तेल लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं बाल ना झड़ जाए, तो बाल को से आसक्ति है वो गोलोक धाम कैसे जाएगा, वो भगवत धाम कैसे जाएगा, नहीं प्रॉपर्टी की बात कपड़ों की बात छोड़ दीजिए, बाल तो मतलब सबसे बता दें शरीर का सबसे बेकार पार्ट है, तमोगुण का लक्षण है बताते हैं शरीर में ज्यादा बाल रहना, इसलिए शास्त्रों के अनुसार बाल को हटा दिया जाता है शरीर से, दाढ़ी मूंछ रखा नहीं आता है, ये तमोगुण का लक्षण है ज्यादा बाल होना। अब देखिए डॉक्टर्स जो होते हैं वो देखना हमेशा क्लीन रहते हैं, कभी उनका दाढ़ी बढ़ाओ नहीं देखोगे, रोज शेव करते हैं लोग, क्लीन से होते हैं, बड़े बड़े कंपनी के मालिक भी देखना दाढ़ी नहीं बढ़ाते, साफ सुथरा रखते हैं। तो प्रश्न हो सकता है ऋषि मुनि तो रखते थे, ऋषि मुनि के पास वहां पर कुछ जंगल में होगा क्या रेजर वगैरह, है ना, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे उस पर, तो लोग सोचते हैं कि छोड़ो हटाओ भजन करते रहो बस, बात ये भी है ना, तो वो ज्यादा व्यस्त रहते हैं भगवान का मनन स्मरण करने में, इसलिए दाढ़ी नहीं बनाते हैं, इसलिए बाल नहीं कटवाते। और आजकल लोग तो बाल बढ़ाते हैं, उसको डाई कराते हैं, कलर कराते हैं, नहीं एक दो बाल लेंगे तो कलर कर देंगे गोल्डन, बीच में गोल्डन, वो तो अपने आप सिल्वर होने वाला कुछ दिन बाद, नहीं बुढ़ापे में सिल्वर हो जाता कई भक्तों का है। तो आजकल कई लोग सिल्वर कराते हैं, आपको पता है कई लोग सिल्वर कराते हैं, हाँ। तो कहने का मतलब ये बोल रहे हैं कि भगवान एक ही वरदान दो कि मेरी इच्छाएं कोई ना हो, भगवान से ही मांगना चाहिए, एक इच्छा, सिर्फ एक इच्छा हो आपका सेवा करना, बाकी कोई इच्छा ना हो, अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, बोले और कुछ इच्छा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रार्थना करनी चाहिए जो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, भगवान जन्म काल से ही काम इच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रिय कार्य मन जीवन शरीर धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा ऐश्वर्य बल स्मृति और सत्य निष्ठा समाप्त हो जाती है, हमारे अंदर जितने गुण है ना हमारी इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाते हैं, इसलिए भगवान मेरी इच्छाएं समाप्त कर दीजिए बस। हे प्रभु जब मनुष्य अपने मन से सारी भौतिक इच्छाएं निकालने में सक्षम हो जाता है तो आपके ही समान संपत्ति ऐश्वर्य का पात्र बन जाता है, आपके समान बन जाता है, उसके अंदर इतने गुण आ जाते हैं। हे ऐश्वर्य प्रभु हे परम पुरुषोत्तम हे परमात्मा हे समस्त दुखों के विनाशक हे अद्भुत नरसिंह रूप में परम पुरुष मैं आपको सदा नमस्कार करता हूँ। तो ये श्लोक कभी कभी बोलते हैं, आप लोग श्लोक को बोल सकते हो, भगवान की स्तुति के लिए श्लोक बोलना चाहिए। ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। इसका मतलब हे षड ऐश्वर्य ऐश्वर्यवान प्रभु हे परम पुरुष हे परमात्मा हे समस्त दुखों के विनाशक हे अद्भुत नरसिंह रूप में परम पुरुष मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो कभी कभी नरसिंह भगवान को प्रणाम करने का ये प्रणाम मंत्र है। यह है दसवां श्लोक अध्याय दस का, इसका सात दस दस। भगवान ने क्या कहा सुनिए। हे प्रिय प्रहलाद, तुम जैसा भक्त ना तो जीवन में ना ही अगले जीवन में किस प्रकार भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है, तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस मनमंत्र तक असुरों के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में ऐश्वर्य का भोग करोगे। क्या बोले, मेरी कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने सारी इच्छाएं खत्म कर दी। अब बोले अब तुम राज करो तो क्या होगा, भोग नहीं करेंगे ना, इच्छा तो है नहीं, तो सेवा करेंगे। जैसे किसी का पेट भरा हो, बोले प्रसाद बांटो, तो अपने लिए छुपा के थोड़ी निकालेगा वो, है ना। पेट भरा हो उसका, सबको बांटेगा, सबको लीजिए लीजिए, सब लोग खाइए, प्रभु जी आपने नहीं, मैं तो संतुष्ट, आप खाइए बस, क्योंकि पेट भरा हुआ ऑलरेडी। तो भगवान ने क्या किया, उसके सब सारी इच्छाएं खत्म कर दी, पेट भर दिया। अब बोले तुम क्या करो, भोग करो। कैसे भोग करो, ऐश्वर्य हुआ कैसे, संसार को शिक्षा देकर। भले ही तुम इस भद्र जगत में क्यों ना रहो, लेकिन तुम निरंतर मेरे उपदेशों और वचनों को सुनना और मेरे विचारों में लीन रहना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक के हृदय में परमात्मा का रूप निवास करता हूँ। अतः तुम सकाम कर्मों का परित्याग करके मेरी पूजा करो, और हे प्रहलाद, इस भौतिक जगत में रहते हुए तो सुख का अनुभव करके पुण्य कर्म के सारे फलों को समाप्त कर सकोगे, पुण्य कर्म करके पाप को विनष्ट कर दोगे। शक्तिशाली काल के कारण तुम अपने शरीर का त्याग करोगे, किंतु तुम्हारे कार्यों की ख्याति गुणगान उच्च लोगों तक बहरुली तक होगी। आज बहरुली तक सुन रहे हैं कि नहीं, हम लोग सोचिए सत्ययुग में बात घटना घटी थी, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मरुले तक सुनाई देगा, सुनाई दे रहा है। तुम बंदरों से मुक्त होकर भगवत धाम लौट सकोगे। कभी कभी लगता है ना कि भगवान ही पूरी राज करने बोल दी, 36 साल कहीं मैं यहीं रहना जाऊं, मैंने भगवान से मांगा ही नहीं कि भगवान मुझे जबरदस्ती क्यों फंसा रहे भौतिक संसार में। तो भगवान बोल रहे नहीं नहीं, इसके बाद तुम मेरे पास आओगे, तब तक तुम क्या करना, प्रचार करना। इसलिए भगवान दे रहे हैं सब। जो व्यक्ति तुम्हारे हाथों और तुम्हारे कार्यों का सदा स्मरण करेगा और तुम्हारे दी गई द्वारा दी गई प्रार्थनाओं का कीर्तन करता रहेगा, वह कालांतर में भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। यानी जो ये लीलाओं को पढ़ेगा वह भौतिक कर्मों से मुक्त हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो मैं इसका वो पढ़ता हूँ फल, श्रुति फल जो होता है, क्योंकि पूरा चैप्टर का श्रुति पढ़ेंगे तो कल भी क्लास करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, हे राजा युधिष्ठिर, बोल रहे हैं यद्यपि भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में सब प्रकट हुए ही थे, फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति से अनेक असामान्य आश्चर्यजनक लीलाएं भी संपन्न की है, जैसे कि अभी भगवान ने नरसिंह भगवान की लीला की है। तो मैंने क्या किया, बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अधिकृत स्रोतों से भगवान के कार्यकलाप के श्रवण मात्र से शुद्ध हो सकता है। जैसा कि जब भगवान के बारे में सुना उन्होंने, तो जैसे प्रहलाद महाराज ने स्तुति की, भक्त सुनते हैं, तो इस प्रकार जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो क्या होता है, हम शुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान के बारे में ये लीला सुनकर हम सभी लोग शुद्ध हो सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर ना ब्रह्मा जी को भी बोलते हैं कि आपने वरदान दिया था तो थोड़ा सोच समझ के वरदान देते, है ना, ठीक है चलो मैं वरदान दे दिया। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं दो कारण से प्रकट हुआ था, एक तो ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं, उनकी बात को रखने के लिए भी, है ना, भगवान चाहते तो बोलते मैं ब्रह्मा जी की बात नहीं मानता, मैं तो ऐसी मनुष्य रूप में मारूंगा उसको और उसके घर में घुस के मारूंगा, कौन रोकेगा, भगवान को रोक सकता कोई, नहीं रोक सकता। लेकिन ब्रह्मा जी की बात रह जाए, नहीं तो कल तो भगवान बोलेंगे, ब्रह्मा जी बोलेंगे क्या मतलब है, मेरा कोई वैल्यू नहीं है क्या, मैं वरदान दिया उसको कोई वैल्यू नहीं है, बुरा लग सकता है। तो वरिष्ठ व्यक्ति कभी कभी क्या करते हैं, छपरे से जो अपने अधिकृत होते हैं, है ना, सबॉर्डिनेट्स का भी क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं कि उसकी बातों का भी वैल्यू दिया जाए, है ना। तो कभी कभी उनकी बात मानी जाती है, तो उनकी बात मानने के लिए उन्होंने क्या किया, एक अद्भुत रूप धारण किया, सारे नियमों का पालन किया उन्होंने, है ना, न धरती पे ना आकाश में, कहां पर रखा, गंगा पर, यहां पर गोद में, न घर में ना बाहर, कहां पर रखा, चौखट पर, दहली पर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, हाथ से, और ना किसी चीज से, ना नर से ना किसी पशु से, भगवान नरसिंह रूप लिया, दोनों मिक्स ऐसा रूप है ना, ना दिन में ना रात में, शाम के समय था, ठीक है, और बोले कि ना जीवित वस्तु से ना मृत से, ये कैसे बताओ, नाखून जो है ना मृत है ना जीवित, बढ़ती भी है, ये बढ़ता है, ये बाहर बढ़ता है पर इसके अंदर जीवन नहीं है, ठीक है, भगवान ने कैसे चीज चुना है, नाखून से मारा, निर्जीव है सजीव दोनों नहीं है, बीच वाला है, क्योंकि बढ़ता है तो उसको सजीव चीज बढ़ती है, पर निर्जीव इसलिए है क्योंकि ये इसमें कोई सेंसेशन नहीं, इसमें कोई चेतना नहीं है, इसमें चेतना हो तो सजीव बोला जाता है, सब काटने में दर्द नहीं होता है, तो भगवान ने क्या परफेक्ट चुनाव किया, कितने दिमाग लगाया सोचिए, हिरण्यकश्यप ने इतना दिमाग लगाया, इतना दिमाग भी नहीं लगा सकते हम लोग, अगर कोई सोचे मैं अपना धन अपनी संपत्ति अपनी आयु बचा लूं दिमाग लगाकर, हिरण्यकश्यप जैसा व्यक्ति नहीं बचा पाया, तो भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं तो आप कितना भी पैकिंग कर लीजिए, कितना भी सामान बचा लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, जैसे एक व्यक्ति, एक बार ऐसा हुआ कि जगन्नाथ जी के मंदिर का दर्शन करने के लिए यमराज जी आए, और यमराज जी दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो सामने देखा कि गौरैया चिड़िया बैठी हुई है, तो उसको देख के मुस्कुराए, तो गरुड़ जी ने कहा यमराज जी ने इसे क्यों देखा, लगता है इसे मार डालने का प्लान है, लगता है इसको यमदूत आएंगे अब इसके बाद ले जाएंगे, क्योंकि पक्षी है गौरैया तो मेरी जाति की है, गरुड़ जी को लगता है, तो गरुड़ जी कहते हैं पंजों से उठाते हैं और उसको ले जाते हैं बद्रीनाथ में, जाते हैं एक पेड़ के खोल में रख देते हैं, मतलब आप तुम चिंता मत कर नहीं रहो तुमको मैंने बचा लिया है, वापस आके गरुड़ जी गरुड़ स्तंभ पर बैठ जाते हैं, यमराज जाते फिर देखते हैं चिड़िया नहीं है, फिर हंसते हैं, बोलते आप क्यों हंस रहे हो, पहले हंसते थे संग मारा था मारना चाहते हो, बोले हाँ से इसलिए रहा था कि ये चिड़िया को तो मरना था बद्रीनाथ में, ये यहाँ कैसे पहुंचेगी मुझे चिंता थी, हंस रहा था मैं, ये यहाँ क्या बैठी है, और हम इसलिए रहा हूँ कि गरुड़ जी पहुंचा दिए वहीं पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरा काम कर दिया। तो भगवान जब मृत्यु रूप में आते हैं, मृत्यु सर्व हर सहम, मृत्यु रूप में सब कुछ भगवान हर लेते हैं, एक धागा भी नहीं बचेगा आपके जीवन कपड़ा शरीर का, भगवान लूटने आते ना नग्न कर देते पूरी तरह, करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक भी हो कुछ नहीं बचने वाला। तो वो बताया गया शास्त्रों के हिसाब से सही समय पर अपनी संपत्ति का सदुपयोग कर लेते हैं। संपत्ति कितने प्रकार की होती है, संपत्ति में क्या क्या आती है बताइए, अगर बोलते हैं आप संपत्ति है क्या क्या संपत्ति है, जमीन भूमि और डॉलर कैश, हम वैष्णव नहीं कैष्णव है, और परिवार संबंधी संतान शरीर समय कपड़ा गहने ज्ञान ऐश्वर्य, कोई उपाधि मिली हो, ये तो पीएचडी होल्डर हैं अभी होल्ड किए हुए हैं, तो ये सब संपत्ति यही रह जाती है, शरीर कपड़ा घर बच्चे सब यही रह जाता है, जिस चीज को भी आप सोचते हैं कि मेरी है ना वो कुछ नहीं बचता है, ये शरीर ही नहीं बचेगा, तो भगवान ऐसे झाड़ते हैं सब कुछ, चल चल दूसरे इसमें ले जा रहे हैं तेरे, वहां ले जाते हैं दूसरे घर में, वहां जाते उसके सब कुछ नया है, बिल्कुल समझ नहीं आता क्या, वो देखता रहता टकटकी लगा के, ये पापा तुम्हारे, बोले पापा तो ये पापा है, पहले तो कोई और थे, नहीं यही है पापा, अच्छा पापा ये मम्मी है, अच्छा मम्मी ये चाचा है ताऊ है, सब बदले बदले लग जाते, ठीक है जी मान लो, मान लेके चलता रहता है, फिर सोचते रहते यही मेरा यही मेरा यही मेरा, फिर भगवान ना उस जन्म को झाड़ देते हैं, चल भाई दूसरे में, लेकिन एक बार भी सोचते नहीं कि असली पापा कौन है, एक बार मुड़ के देखा नहीं है झाड़ता कौन है, ये है कौन। तो एक बार पलट के देखो खटोपरिषद दादाते, एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी पेड़ के सुख और दुख के फल खाता रहता है और दूसरा उपदष्टा अनुमंता है, देखता है, विटनेस देखता है। तो प्रभुपाद जी बोलता है अगर वो पक्षी, पहला पक्षी तो दुख सुख के फल खा रहा है, दूसरा पक्षी अपने मित्र पक्षी को देख लेता है, तो उसके जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। हम इस शरीर रूपी वृक्ष में दुख और सुख का अनुभव कर रहे हैं, परमात्मा हृदय में बैठे हैं, ये पेड़ है ना, इसमें दो पक्षी बैठे हैं, आत्मा परमात्मा। हम जैसे ही आत्मा परमात्मा का दर्शन कर लेती है फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, इतना आनंद आता है ना। संसार में कोई चीज डिजायर नहीं रहता उसका, कोई डिजायर ही नहीं होता, डिजायरलेस हो जाता है। पर हमारे इतनी से डिजायर सभी है ना, इसका कारण ये कि हमने परमात्मा को वास्तव में दर्शन नहीं किया, फील नहीं किया, महसूस नहीं किया, इसलिए इच्छाएं। सुनते तो सब है, भागवत में खुद सुना चार दिन, जैसे ही सामने गुलाब जो मनाता है सारा कथा पागल हो जाता है, भागवत हम सुना नहीं देते फिर तो। हाँ मैंने बताया था एक बार हम लोग मायापुर में परिक्रमा गए थे, बैठे हुए थे प्रसाद के लाइन में, तो प्रसाद आता है ना तो लोग कोई ऐसा सीधा नहीं देखता है, अपन थाली भी नहीं ऐसे देखते सब लोग, क्योंकि उधर से आ रहे हैं ना प्रसाद बांटने वाले, तो कितना आइटम है उतना उतना लेंगे, जगह भी रहना चाहिए ना, तो ऐसे देखते हैं लोग। तो एक व्यक्ति कान में कीर्तन लगाया हुआ था जोर से, खूब जोर से गाते हुए गुलाब जामुन बांट रहा सब, तो मेरे बगल वाले दिया, सामने लग दिया, मुझे दिया, उसके सामने लग दिया, बगल वाले को नहीं दिया, उसके बगल में दे दिया गलती से, देखकर जाने लगा, बोलते प्रभु जी यहाँ तो दीजिए, वो देखा नहीं क्योंकि सुन रहा था व्यक्ति, बांटते बांटते बीच चला गया, प्रभु जी इधर दीजिए, प्रभु जी चिल्ला रहा था जोर से, बहुत जोर से चिल्लाया प्रभु जी। तो सब इनकी तरफ देखने लगे किस प्रभु जी के बारे में बोल रहे हैं, बोलते तो उसको रोको रोको उसे, सब उसको घेर रहे हैं, रोक लिया सामने में, क्या हो गया कहां से निकलो, क्या हुआ प्रभु जी, बोलते तो गुलाब जामुन उसको नहीं दिया, किसको नहीं दिया मैंने, एकदम मतलब हाकर जंगल में आग लग जाती ना वैसे हो गया वातावरण, गुलाब जामुन कांड हो गया, ला के उसको गुलाब जामुन दिए, तो देखा करो प्रभु जी कि जीवात्मा यहाँ बैठा है, मर जाएगा तो कहा जा ठीक है चला गया। ये सब खाते रहे, मुझे बहुत हंसी आ रही थी, बगल में बैठ रहा था, अब मित्र ही है हमारे, तो मैंने उसको बोला प्रभु जी हमने कभी भगवान के लिए ऐसा चिल्लाया नहीं है जैसा गुलाब जामुन के लिए चिल्लाया, कभी अपने चिल्लाया कृष्णा ऐसे चिल्लाया, किसका चिल्लाता साथ कृष्ण आ भी जाते हैं, बोलते प्रभु जी अब शर्मिंदा मत करो मुझे, आराम से गुलाब जामुन खाने दो। तो शास्त्रों को सुनना उसको अपने जीवन में अमल करना बहुत अंतर है। तो हम जितनी बातें सुने हैं अगर इस सिर्फ कथा और सत्संग समझते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, जो आपने सुना है उसको पालन करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि भगवान से प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, है ना। तो ठीक है आप लोग से प्रश्न है, 5 मिनट का और आप लोग बताइए हाथ खड़ा करके, इस 4 दिनों में आपने क्या शिक्षाएं ग्रहण की है जिसको लगता है कि हम अपने जीवन में अपना सकेंगे, प्रयास करेंगे, घबराइए मत, अगर नहीं भी कर सकेंगे तो कोई दोष नहीं, लेकिन कम से कम शिक्षा तो ली आपने, हाथ खड़ा कीजिए।
भगवान की भक्ति करना और उसकी एवज में कुछ ना मांगना,
भगवान की भक्ति करना उसके एवज में कुछ नहीं मांगना, यस प्रभु जी।
विनम्र
रहना,
किसी
भी कंडीशन में द्वेष और राग उत्पन्न नहीं करना, यस प्रभु जी। पीछे भगवान की सेवा करना, वेरी गुड। अपनी भौतिक इच्छाओं को कम करना कि खत्म करना, कम, चलिए ठीक है कम कर लीजिए, कम ही बहुत आसान नहीं है। जो भी मुझको सब जीवन भौतिक संसार मिला है, मनुष्य शरीर मिला, उसको सेवा में लगाना, कोई आसक्ति नहीं करना, ओके। और कौन बताएगा, कोई शिक्षा नहीं मिली, बचपन अपने बच्चों को बार पीटना चाहिए ऐसे बोला था, भगवान की भक्ति में लगाना है, वेरी गुड। वैष्णव के शरण और सुनाई दे रहे चर्चा, भगवान की चर्चा श्रवणम कीर्तन करना चाहिए भक्तों को, वेरी गुड। और और क्या शिक्षा मिली प्रभु जी? पूर्ण विश्वास करना भगवान पर और पूरी तरह भगवान पर आश्रित हो जाना। वेरी गुड। और बोलिए, घबराइए मत, भगवान की शिक्षा। यस, हाँ, अपना पूरा जीवन भक्तिमय बना देना चाहिए। पूरा वातावरण, घर बार सब कुछ ऐसा डिजाइन कीजिए कि पूरा जीवन भक्ति में बीते। डिजाइन करना पड़ेगा, हम ही डिजाइन करते हैं अपने घर को ना, अपने घर का वातावरण, तो भक्तिमय भी डिजाइन कर सकते हैं। और बताइए, नहीं जो नहीं बताया वो बताए। संसार में रहते हुए संसार से अलग रहने का प्रयास, दोस्तों से दूर। वेरी गुड। और हाँ, भक्तों का संग करना है। वेरी गुड। भक्तों का संग करना, सब अपने आप छूट जाएगा, है ना। शराबी से दोस्ती करोगे, शराब पीने से जाओगे, भक्तों से संग करोगे, संसार छूट जाएगा। और माता जी इसके सारे लोग सुने, आप लोग सुने हो ना, कितने लोग चारों दिन अटेंड किए हैं, अब कब लोग उठाएंगे कुछ न लें। बोलिए, जैसे प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि का संग लिया, ठीक है। ये हो सकता है मैं तो बस साधारण व्यक्ति हूँ। आप शिक्षा बताइए प्रहलाद महाराज, बताइए। भगवान की कथाओं को सुनकर उनका प्रचार करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने कहा ना कि मैंने आप सुना है, देखा है, जो भी सबको मैं दूसरों को बताऊंगा। और बहुत सी शिक्षा भी है। हिरण्यकश्यप से क्या शिक्षा मिली? हाँ, हिरण्यकश्यप के जीवन से शिक्षा मिली है कि आप कितना भी प्रयास करोगे मृत्यु को रोक नहीं पाओगे। शंड और हमक से क्या शिक्षा मिली है? उन्होंने कितना भी प्रयास किया उसे सिखाने का, वो सिखाने पर। वैसे एक शुद्ध भक्त को आप कितना भी प्रयास करो उपटांग से सिखाने का, वो नहीं सीखेगा, ठीक है। तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं, अगर आप शिक्षा नहीं लेते हैं तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। अभी बहुत सारी शिक्षाएं हैं, कोई बताना चाहेगा जो बच गया है? बिल्कुल, दूसरों को मरता हुआ देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि बेचारा मर गया, रोने लगते हैं, पर ये नहीं सोचते हम भी मरने वाले हैं। समझ लीजिए आपके पड़ोसी को या आपके घर के परिवार के प्रिय व्यक्ति गोली मार दिया किसी ने, तो उसको देख रोने लगोगे, फिर आपको बंदूक टाल दे तो रोना आएगा? आप पर कोई बंदूक लगा दे और ट्रिगर को दबा कर रखे तो आप बोले रो रोगे? अपनी चिंता होने लगेगी ना। तो इसलिए अपनी मृत्यु को याद करते हैं तो संसार का शोक नहीं होगा, तुरंत यहाँ से निकलने का प्रयास करें। और जल्दी से बताइए, ठीक है। हर वस्तु का प्रयोग किसके लिए करना चाहिए? भगवान के लिए। भगवान और भगवान के भक्तों से द्वेष नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, भगवान ऑपरेशन कर देंगे, खीर पार कर देंगे। और कौन बोल रहा है? हाँ, भगवान ने प्रहलाद महाराज से, प्रहलाद महाराज ने कहा ना इस खंभे के अंदर है, तो भगवान ने प्रूफ कर दिया खंभे के अंदर। और ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे ऐसे नहीं मरोगे, तो वो भी प्रूफ कर दिया, दोनों चीज किया माता जी। प्रहलाद महाराज की तरह हमें भी दृढ़ रिश्ता होना चाहिए। वेरी गुड। प्रहलाद महाराज ने सोचिए जिस फैमिली में चाचा ताऊ मामा फ्रेंड गांव वाला पान वाला ठेले वाला सब असुर हो, उस जगह भक्ति करना कितना कठिन है। हमारे यहाँ तो इतना वातावरण है, भक्त लोग कोई राम राम बोलेगा, कोई हरे कृष्णा बोलेगा, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, सुबह उठते हैं दूसरे से मिलते हैं, कोई भक्त दिखता, कोई मंदिर दिख भी रहा है। आप सोचो ऐसे स्थान पर पहुंच जाओ, सारे असुर रहे, उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं बस, तो वहां भक्ति करना कितना कठिन है। पर प्रहलाद महाराज का दृढ़निश्चय कितना था, हमारा दृढ़निश्चय है सर।
भक्ति और भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए कोई आयु विशेष नहीं होती,
भक्ति करने के लिए कोई आयु निश्चित नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। जब बच्चा कर सकता है तो बूढ़ा व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता, जवान तो एकदम परफेक्ट है। और हाँ, उन्होंने जब पूछा तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुमने क्या कहा, मुझे सेवा चाहिए, किसकी, गुरु की, गुरु की सेवा होगी तो आपकी कृपा प्राप्त होगी। और हाँ, प्रत्येक वस्तु को क्या भगवान का दर्शन करते थे। प्रहलाद महाराज किसी मंदिर में नहीं गए, कहीं वर्णन नहीं है, वो कहीं भी जाते थे क्या देखते थे, भगवान का दर्शन करते थे, है ना। और तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हम भगवान को ना भूलें, मेरे गुरु। और 9 अध्याय हैं, आप इसको आप होमवर्क समझिए, मुख्य जो अध्याय हैं उनको जाकर उनके श्लोक को पढ़ो, उनके तात्पर्य को पढ़ो और उसको समझने का प्रयास करो, तो सब कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। जो आपने शिक्षाएं सीखी है, जो कथाएं सुनी है, नरसिंह चतुर्दशी आने वाली है, 3 तारीख को नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे खंभे से, 3 आने वाले 3 मई को, उसी दिन चतुर्दशी के दिन, तो उस दिन प्रकट हुए थे, तो इसलिए उस दिन लोग फास्टिंग रखते हैं शाम तक, तो भगवान शाम तक प्रकट हुए थे ना, दिन में नहीं रात, तो शाम को हुए थे, तो जैसे शाम होता है तो भगवान का अभिषेक होता है मंदिर में, तो वहाँ जाकर आप दर्शन कर सकते हो। कई लोग व्रत रखते हैं और भगवान को अहोविलम जहाँ स्थान है साउथ इंडिया, वहाँ प्रकट हुए थे, अहोविलम जगह नाम है, वहाँ पर खम्बा है, उसके बगल में ही मंदिर बनाया गया है, उस मंदिर के अंदर विग्रह है नरसिंह भगवान का, बताते हैं उनको जो भी भोग लगाया जाता है वो आधा हो गया वापस आता है, एक ड्रम अगर आप खीर ले जाओगे तो आधा ड्रम खीर आएगा, एक ड्रम पणकम बोलते हैं, पणकम जानते हो, गुड़ का उसमें बहुत सारा आइटम डाल के पानी ठंडा पिलाते हैं भगवान को शांत करने के लिए, तो आधा ड्रम जाते हैं तो आधा आते हैं। तो एक व्यक्ति ने, वैज्ञानिक सोचा ये सब लोग कोई अंदर होगा वो निकाल लेता होगा, तो व्यक्ति ने क्या किया, वो लोहे का एक सीकड़ डाला तो आधा सीकड़ वापस आया, तो सोचा किसी ने काट लिया है, तुमने हाथ डाला तो आधा आधा हाथ वापस आया। तब बोले अब कई लोग को ऐसी होता है ना, जब तक अपने पर नहीं बीतती समझ नहीं आता लोग, तो वहाँ पर वो है स्थान सीमांचल और अहोविलम, ऐसे कई स्थान हम नरसिंह भगवान साउथ इंडिया में ज़्यादा मिलेंगे आपको, तो सबसे अच्छे नरसिंह भगवान का जो दृश्य मिलेगा मायापुर में, आप मायापुर में जो नरसिंह भगवान है, तो प्रभुपाद जी ने उसकी स्थापना करने के लिए कहा कि आप नरसिंह भगवान की स्थापना कीजिए, तो लोगों ने कहा 2 फीट का बनाना पड़ेगा प्रहलाद महाराज, तो बोले नियम के अनुसार 120 फीट होना चाहिए नरसिंह भगवान, इतना बड़ा मूर्ति में बना नहीं सकता, पत्थर है नहीं, मूर्तिकार ने बना कर दिया। और बोलते हैं ये जो स्थानु नरसिंह है, उग्र नरसिंह भगवान ऐसे खड़े हैं और झुके हुए हैं, अब वो जंप करने वाले हैं और हिरण्यकश्यप को पकड़ने वाले हैं, वो सीन है, वो विग्रह है, जो एक फोटो लगा नरसिंह भगवान का यहाँ लगा हुआ, देखिए इस तरफ लेफ्ट में तुलसी जी के पास, वो विग्रह ऐसे ध्यान से देखें, नाखून ऐसे और भगवान से झुके हुए हैं और दांत खुला हुआ है, तो बोलते हैं इस विग्रह का पूजा करने वाला अगर एक दिन भी पूजा बंद कर देगा, एक बार भी पूजा बंद कर देगा, तो पूरा गांव जल जाता है, शरीर से आग निकलती है विग्रह से, तो हम ये विग्रह नहीं बना सकते। तो भगवान सपने में आते हैं, बोलते हैं नहीं, ये इस्कॉन वाले जो सेवा करते हैं बहुत अच्छी सेवा करते हैं, मेरा विग्रह बना कर दो उनको, उस मूर्तिकार को बोले, तो मूर्ति बनाने के लिए बताते हैं कि ऐसे पत्थर को चुना जाता है जो जीवित पत्थर कहा जाता है, तो उसके अंदर कीड़े को डाल देगा तो कीड़ा अंदर से घुस के दूसरे तरफ निकल आता है, ऐसा है। वैसे पत्थरों में जीवन होता है बताया जाता है शास्त्रों में, आच्छादित चेतनाएं होती है। तो इस प्रकार हमें ये देखना चाहिए कि भगवान के विग्रह कैसे होते हैं। तो उनके विग्रहों को बनाया गया, तो बनाकर तैयार जब हो गया विग्रह तो फोन आया वहां से, ट्रंकल आया, उस समय ट्रंकल होता था कि हम लेने आ रहे हैं घर के, तो छह सात दिन में आ जाएंगे। तो ये जब ट्रंकल अटेंड कर रहे थे, जो पूजा जिसने बनाया था मूर्तिकार, उसके बेटा दौड़ते हुए बोले, पिताजी हमारे घर में आग लग गई है, वो मूर्ति के चारों ओर आग लगी हुई, जल्दी पहुंचो। घर जाकर देखते तो पूरा घर जल रहा है। तो तुरंत फिर से ट्रंकल को बोलते, छह दिन नहीं, आज ही आ जाओ कैसे भी करके, एरोप्लेन से जहाँ से भी जैसे ही आ जाओ, मूर्ति तैयार है, की सेवा नहीं होगी तो पूरा गांव जल रहेगा। तो मूर्ति को लेकर आ गए ट्रक में, रेत में रखा गया, पानी से नहलाते थे, गर्म बहुत था, और रास्ते पर लेते गए, इतना बड़ा मूर्ति कहीं कोई चुंगी पर कहीं पर नाके पर रोक न ले। तो एक स्थान में कोई नाके पर एक व्यक्ति था, रोक लिया, तो रोक रहा था, तो हमने सोचा कि भगवान कैसे पार होंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, रोक लिया। तो जब खोलने के लिए पीछे का दरवाज़ा खोला, तो जो व्यक्ति था जिसने रोका था, जबरदस्ती उसको पता था कि उसके अंदर भगवान की मूर्ति है, शायद मुसलमान होगा जो भी होंगे, तो मूर्ति तोड़ना चाहते थे। तो वो भगवान का दर्शन किए ना, तो भगवान ने क्या कर दिया, तो बेहोश हो गया। फिर बाद उसने सब घटना बताई कैसे उसके साथ हुआ था। तो फिर वो विग्रह को लेकर आया गया, अभी विग्रह की सेवा होती है वहाँ पर, वो बहुत अच्छे विग्रह हैं, बहुत जल्दी रेसिप्रोकेट करते हैं, जो भी वर मांगो वो देते हैं। लेकिन हमें क्या वर मांगना चाहिए, कि भगवान मेरी कोई इच्छा ना हो, यही वर दीजिए, है ना, यही मांगना चाहिए। तो नरसिंह भगवान है ये विग्रह, रोज सेवा होती है, बताते हैं बाढ़ आ जाती है तो भगवान के विग्रह इतने डूब जाते हैं, और जो व्यक्ति है उसका पानी यहाँ तक होता है, जो व्यक्ति पूजा करने के खड़ा होगा ना, उसका जमीन इतना है, तो पूजा कैसे करता है, हाथ ऐसे करता है, सांस नहीं लेता उसके अंदर, जो बाहर आता है कुर्सी पर चढ़ता है पूजा करता है, ऐसे पूजा अभी भी करते हैं लोग। तो नरसिंह भगवान के बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सा स्थान है, आप पूरे विश्व में दर्शन कर सकते हो और कृपा प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, हरे कृष्णा। नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की, किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कॉकरोच विषैला नहीं होता है, अच्छा तो ये रहता है कि स्वच्छता का पालन करें, पहले गंदगी करते हैं, फिर कॉकरोच आता है, फिर कॉकरोच को मारते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हम क्लीनली ज़्यादा करें, पर कभी कभी किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति का, किसी चीज़ का अगर अतिक्रमण हो जाता है, आतताई बन जाते हैं, तो मारना पड़ता है। लेकिन अच्छा तो ये रहता है कि ऐसी दवाई डालें कि वो भाग जाए मरने के बजाय। भगाना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी मायापुर में थे, मायापुर में बहुत बड़े बड़े मच्छर होते हैं, मतलब 10-15 मच्छर आपको उठा के ले जाएंगे, ऐसा समझ लीजिए। तो मच्छर थे, वो प्रभुपाद जी के ऊपर बैठे हुए थे, काटा नहीं था अभी, और मच्छरदानी के अंदर घुस गए। तो तमाम कृष्ण महाराज उसको मारने के लिए दौड़े, बोले नहीं नहीं मारो मत, ये धामवासी है, ये धाम में रह रहा है। तो बोले ठीक है प्रभुपाद। फिर थोड़ी देर बाद प्रभुपाद जी काट लिया मच्छर ने, बोले अब इसे मार दो, ये मुझे काट रहा है, ये आताताई हो गया। जैसे भगवान बोलते हैं कि दुर्योधन और दुशासन ये आताताई हैं। आताताई किसे कहा जाता है, जो आपका धन लूट ले, आपकी स्त्री का अपहरण कर ले, आपकी बेइज्जती करे, आपका राज लूट ले, आपको आग में जलाने का प्रयास करे, जो उन्होंने सारा किया था। तो ऐसे आताताई को मारना कोई दोष नहीं है, इसका पाप नहीं लगता है। पर हम ऐसा मौका भी क्यों न दें, मच्छरों के लिए साफ सुथरा रखें, शाम होने के पहले ही लाइट चालू कर दें, ओडोमॉस लगा दें या ऑल आउट लगा दें, और घर में साफ सुथरा रखें, आसपास कचरा उस पर तेल डाल दें, है ना, सुरक्षा का ध्यान रखें। बताते हैं मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो साफ पानी मंडे देते हैं, याद रखिए, डेंगू के भी तो साफ पानी को खुला छोड़ देते हैं बाल्टी में, उसमें भी अंडे दे देंगे वो। तो पहले तो हम मच्छर पैदा करवाते हैं, सहायता करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं मार दो, तो दोष हमारे लगेगा ना। स्वच्छता का पालन करें, सभी घरों में कॉकरोच नहीं होते हैं, जिस घरों में गंदगी ज्यादा होती है स्त्रियां या पुरुष जो भी घर के हैं सदस्य हैं वो अच्छे साफ सुथरा नहीं रखते, वही कॉकरोच होते हैं। तो सफाई का बहुत ध्यान रखिए तो नहीं होगा। सीवर को, सीवर में जाली लगी रहती है, कैसे आ जाएगा जाली से, कैसे आ जाएगा, आप साफ सुथरा रखेंगे नहीं आएगा। देखिए उसका कॉकरोच का काम है गंदगी में जाना, आपके घर में स्वच्छता है तो आएगा और घूम कर चल जाएगा, बोलेगा साफ सुथरा जगह है, चलो यहाँ से। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथा श्रीमद भागवतम की। आज का प्रसाद स्पॉन्सर्ड किया गया है प्रतीक त्यागी प्रभु के द्वारा, हरे कृष्ण। तो उनके लिए सब एक बार हरे कृष्ण मंत्र को उच्चारण कीजिए ताकि भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा।